आपने कभी भी एयर होस्टेसों को देखा होगा जहाजों में, कभी आपने उनको रंग बिरंगा देखा, एक ही रंग के कपड़े हों लेकिन रंग बिरंगे हों, किसी ने ब्लू पहनना हो, जंपर पहनना हो, तो किसी ने स्कर्ट पहन ली हो, तो किसी ने शरारा पहन ली हो कि ब्लू ही पहनना है ना, ऐसा नहीं होता ना। तो ये अंदर का हुसन होता है। और हम जब अपनी आम जिंदगी में, जैसे हम शादियों में जाते हैं, दर्शन कहीं भी अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो जो भी हो, ये नहीं कि नहीं है तो पीछे पड़ गए, लेकिन जो भी हो हम कोशिश करते हैं ना कि एक जैसा पहने, मैचिंग हो, क्योंकि हम सबकी निगाहों में खूबसूरती की अहमियत है, राइट। तो ये नहीं हो सकता कि हमारे अंदर एथेटिक सेंस नहीं है। और ये इस तब हमने सैटरडे में बात की थी प्रैक्टिकली, जब हम कुछ केसेस देख रहे थे अपनी तस्किया सीरीज में, कि ये भी एक अंदर से बिगड़ी हुई अना होती है कि मैं रूल नहीं मान सकती, मजबूरी हो सकती है। अब आप कहेंगे हमें तीन कोने स्कार्फ की आदत नहीं है, बना लीजिए। क्या मैं सीधे दुपट्टे की बजाय तीन कोने वाला दुपट्टा नहीं लेना पसंद कर रही, या मुझसे इतने, मैं इतनी सेंसिटिव हूं कि मेरे से ये नहीं हो पा रहा, तो क्या मैं सूरह तौबा के अहकामात मानूंगी, सूरत अनफाल मानूंगी? ठीक है, खुद को बात करें। देखिए 12वें पारे पे हैं, हम लोगों ने हम कुछ भी कह सकते हैं आपको, लेकिन हमने अभी आपको वो सिस्टम ही नहीं सच्ची बातें दिया। लेकिन यही है कि यूनिफॉर्म ना पहनने का भी कफारा होता है, कहीं सदका है कहीं नफल है, लेट आने का भी होता है, हर चीज। तो मेरा दिल यही चाहता है कि हम सब खुद से खुद काम करें, ना ही कोई कहे हमें। और असल तकवा भी यही है कि मुझे खुद अपनी बातों का एहसास हो, अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो इसको दरगुजर कर दें। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हम सब की खूबसूरती के लिए है। कुरान पढ़ के जब यहां से निकलना है ना, तो जो किरदार सामने आना है वो बड़ा अहम है। ठीक है, चलिए अब अगले अगले सबक पे जाते हैं। आज का सबक बहुत आसान, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड, सिर्फ एक ऐसा मौजू आएगा जिस पे हमें बात करने का मौका मिलेगा, बाकी तकरीबन ये सारी वो बातें हैं कि जो हम पहले कई दफा कर चुके, लेकिन अब चूंकि अंबिया कराम की सीरत और उनकी स्टोरीज के नाते से हम इनको पढ़ रहे हैं, तो यकीनन हमने इस पे गौर व फिक्र भी करना है। शुरू करेंगे, نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ایک چھوٹی سی بات اور کہہ دوں حالانکہ میں نے خطبہ شروع کر دیا کیونکہ مجھے بار بار اور روز روز کہنا اچھا نہیں لگتا کہہ دوں دیکھیں جس طرح میں نے آپ سے یہ عرض کی نا کہ ہم یہاں آتے ہیں تو جوتے کہاں رکھیں اس سے ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے کا اثر ہوتا ہے آپ کو یونیفارم پہ تھوڑی سی نصیحت کر دی اس لیے کہ بھئی آپ پہن کوئی اس روم میں آئے تو اچھا کیسا لگے اسی طرح جب آپ یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں اگلے دن آنے تک ایک نظر پیچھے دیکھا کریں کہ میرے بعد اس ہال میں کوئی بھی آئے گا تو اس کو یہ ہال کیسا لگے گا ٹھیک ہے کوئی آپ اپنا کشن لے کے آتے ہیں گھر سے 100 دفعہ لائیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھ کئی پرابلم ہے اس کو جاتے ہوئے ساتھ لے جائیں اگر آپ سوچتے ہیں روز اٹھا کے لاؤ تو کشن نہیں اٹھا کے لا سکتے تو ہم پہاڑ کیسے اٹھا کے لائیں گے آپ کہتے ہیں گھر سے روز لانے میں بھول جاتا ہے گاڑی کی ڈگی میں رکھ دیں ٹرنک میں رکھ دیں آپ کہیں میں تو واک کرتی ہوں اپنی کسی دوست کی گاڑی میں رکھ دیں لیکن اس نظر سے اس ہال کو دیکھیں کہ بعد میں ادھر جب کوئی آئیں گے تو سوچیں گے یہ کیسے لوگ ہیں اپنی منجیاں پیڑیاں ادھر چھوڑ گئے یعنی یقین کریں کوشنز کے ساتھ ساتھ بعض لوگوں کے فٹ سٹیپ بھی ہوتے ہیں نا تو چھوٹی سی باتیں کوئی سکارف آپ کا کوئی کسی کا بایا ادھر ہو تو وہ پھر لاسٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بس اس نظر سے کہ ماں قدم ہوا سارہم کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا ہر قدم لکھ رہے ہیں اور جو تم نے آگے پیچھا اور جو چھوڑا تو ہمیشہ یہ سوچئے کہ وج علی لسان صدق فی الآخرین کہ اللہ مجھے میرے بعد والوں کے لیے ذکر خیر والا بنا دیں کہ لوگ میرا اچھا ذکر کریں چلیے اب ہم چلتے ہیں آگے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر بولیے صرف میرے آج ایک اگلی دھائی پہ چڑھ رہے ہیں یہ وہ سننا چاہ رہی تھی آپ سے سبق نمبر 120 آیت نمبر 84 سے 101 آپ کو یاد ہے کہ چند دن پہلے کی بات لگتی ہے جب ہم نے 100 کا فگر اپنے سبق میں لیا تھا تو 100 کے بعد پھر 110 और आज 120। कितनी जल्दी ये सीढ़ियां गुजरती जा रही हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये सब कुछ हमारे अंदर चला जाए। तो सबक नंबर 120, आयत नंबर 84 से 101 सूरत हूद, लेसन नंबर 120, आयत नंबर 84, 2101 सूरत हूद। आज के सबक का खुलासा कि आज हम इस सबक में क्या देखेंगे कि जुदा दीन से हो कोई चीज, तर्ज जिंदगी, तो पीछे सिर्फ रस्म रह जाती है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा और बिल्कुल मुख्तसर सा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आज हमारे सबक में आएगा। हजरत शुएब का किस्सा हमें यह सिखाता है कि दीन का ब्राह रास्त असर इंसान की इकोनॉमिक्स पे पड़ता है। माली मामलात को दीन से अलग नहीं किया जा सकता। दीन सिर्फ मस्जिद में रखने वाली चीज नहीं है, इसका असर मईशत पे भी पड़ेगा और माशरत पे भी पड़ेगा। और उसके बाद कौमे मूसा का किस्सा हमें ये बताता है कि सियासत को दीन से जुदा नहीं किया जा सकता। हकीकत यह कि दीन एक तर्ज जिंदगी है। अभी रास्ते में किसी से बात हो रही थी तो छोटी सी बात थी, उन्होंने कहा कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों पे बहुत रिजिड हो जाते हैं कि ये भी गुनाह है, ये भी गुनाह है, और आप बताएं कि क्या है। तो मैंने उनको छोटी सी एक मिसाल दी थी कि एक हमारा कपड़ा होता है जिसको हम फॉर्मल ड्रेस कहते हैं, शादियों पे पहनते हैं, दावतों में पहनते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत महंगा, बहुत सजावा, लेकिन हम खुद उसको थोड़ी देर से ज्यादा नहीं पहन सकते। मेहमानों के जाते या खुद जाएं कहीं से तो फौरन जाके उतार देते हैं, बर्दाश्त नहीं होता, चुभता है, खूबसूरत बहुत लगता है। लेकिन एक होता है हमारा फॉर्मल ड्रेस, घर के आम कपड़े, सीधे साधे, लॉन और लीलन के जोड़े, उसको बहुत ज्यादा फैंसी ना भी करें लेकिन उसको पहन के मजा बहुत आता है। तो मैंने कहा कि वो लोग जो दीन को बहुत खास रिचुअल पे रखते हैं, शाबान आया तो ये मना लो तो शबे बरात हो गई, मेराज आ गया तो आप ये कर लीजिए, कुछ खास मौके पे कोई मिलाद कर लिया, कभी एक कुरान खानी कर ली, किसी दिन दर्स कर लिया, दैट्स इट, दिस इज द फॉर्मल रिलीजन। लेकिन ऐसी सोच रखने वाले दीन को हिस्सा नहीं बनने देते आम जिंदगी का। इसके बरक्स अगर दीन की असल रूह देखें, और जो मुझे समझ आई है, ज्यादा समझ नहीं है मेरे पास लेकिन जितनी भी है उससे मुझे ये समझ आई कि दीन इज वेरी फॉर्मल, इजी टू अंडरस्टैंड, एडजस्टेबल दीन है। इसको आप जिंदगी के जिस हिस्से पे चाहें ये इतना ज्यादा कंफर्टेबली, इतना कंफर्टेबली ये फिट हो जाता है कि आपको लगता है कि बिल्कुल ये मेरे ही लिए बना था। और आपने आजमाया होगा जो मजा अपना कपड़ा पहन के आता है ना, वो दूसरे का कपड़ा अगर कभी कोई पहने भी तो मेरा नहीं ख्याल आता है। पहले तो आप कॉन्शियस ही रहते हैं कि इस चादर पे धब्बा ना लग जाए और इसके रुमाल को कुछ हो ना जाए। इसी तरह जब दीन को हम अपनी जिंदगी के अंदर ले आते हैं ना तो हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। एक छोटी सी मिसाल दे के आयतों पे चलूंगी क्योंकि आज का सबक हमें यही सब कुछ बात करने पे मजबूर कर रहा है। आप देखिए कि एक वो मेहमान होता है जिसकी आप बहुत इज्जत और तकरीम करते हैं, घर के बिल्कुल शुरू में ही एक बड़ा खूबसूरत सा गेस्ट रूम बनाया हुआ है आपने। चलिए इधर तो आपके पास इस तरह का तस्वीर कम है लेकिन अमूमन पाकिस्तान के बड़े घरों में आपने देखा होगा कि बाहर गेट के साथ ही बिल्कुल अंदर एंट्रेंस पे गेस्ट रूम एक बल्कि पूरी अनेक सी होती है। अब आप क्या करते हैं कि एक मेहमान जिसकी आप इज्जत बहुत करते हैं, रिस्पेक्ट आप बहुत करेंगे, आप उसके लिए खाना बहुत अच्छा पकाएंगे, आप उसकी हर तरह की जरूरत का ख्याल रखेंगे, आप आते क्या करते हैं कि मेन डोर नहीं, गेस्ट रूम, सिट हियर, आप उनको उधर बिठाते हैं, अपने नौकरों को भी लगाते हैं, उसकी खिदमत में सब कुछ करते हैं, एक दो चार दिन जितने दिन वो रह सकता रहता है उसके बाद आप उसको रुख्सत कर देते हैं, सब कुछ करते हैं आप उसको, लेकिन आप उसको अपने मेन घर के अंदर के हिस्से में नहीं लाते या नहीं ला सकते या कुछ भी वजह होती है। ठीक है, अब किया कि आपने, कि आपने इस मेहमान की इज्जत तो बहुत की लेकिन इसको अपना नहीं समझा। हो सकता है कि वो गैर ही हो, मैं ये नहीं अब कह रही कि इसमें पर्दे और इसको ले, मैं सिंपल मिसाल दे रही हूं। बास लोग दीन के साथ भी यही मामला करते हैं, वो दीन को साइड के गेस्ट रूम में तो रखना चाहते हैं, इज्जत भी करते हैं उससे, उसका ख्याल भी रखते हैं लेकिन उसको अपना नहीं समझते। नबियों की नबियों के जो हालात हम पढ़ रहे हैं अभी तक, आप देखिए कि हमने 3, 2, 5 नबियों के हालात पढ़ लिए, 3 इब्राहिम से पहले के दौर के, 2 इब्राहिम खुद और लूत अलैहिस्सलाम, और पीछे 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। आप देखेंगे कि नबियों की कौमें जो थी उनके अंदर जो आगाज हुआ था ना, नुक्ते आगाज बिगाड़ का, वो शिर्क से हुआ था। और शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसको आप बीज से तशबीह दे सकते हैं। जब ये बीज पड़ता है ना किसी भी जगह पे तो उसके अंदर से जो फसल उगती है ना वो नाफरमानियों की उगती है। आपने कौमे हूद की बात सुनी, कौमे हूद का मसला क्या था, बढ़ाई सेल्फ प्रोटेक्शन, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे, रूट कॉज क्या थी, शिर्क। अल्लाह को जब उसका हक ना दिया तो आपको अपना हक बड़ा लगा, नतीजा क्या हुआ कि उनके अंदर पंप एंड शो एंड ग्लैमर शुरू हो गया। कौम सवाले पे चलिए, जिनको हमने उसके बाद थोड़ा सा देखा, उस कौम का मसला क्या था कि वो अपने आप को बहुत लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग दुनिया में रहना चाहते थे, यानी दुनिया में उनकी मोहब्बतें बहुत बड़ी हुई थी और अल्लाह से नित नए मुतालबे करना चाहते थे, इसकी रूट में भी शिर्क था। उसके बाद देखिए, अगर हजरत लूत की कौम जिसका किस्सा इससे पीछे हमने पढ़ा, उनका मसला क्या था, होमोसेक्सुअलिटी थी। लेकिन होमोसेक्सुअल बंदा पहले दिन नहीं होता, पहले दिन बंदा मुशरिक बनता है। ये जुमला लिखाना चाह रही हूं, सबसे पहला जुर्म जो किसी बंदे के अंदर आता है वो शिर्क आता है। अल्लाह को उसका हक छेड़ता देना, अल्लाह की कदर वैसी नहीं करता जैसी करनी चाहिए, नतीजा के कोई होमोसेक्सुअलिटी में चला गया, कोई कुछ। इसी तरह कौम शुएब जिसका तस्करा आज हमारे सामने, और पीछे भी अल्हम्दुलिल्लाह इनके हालात पे बात हुई थी कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम एक कारोबारी कौम की तरफ भेजे गए, तिजारत पेशा कौम थी, मदियन नाम का शहर था जहां इनको भेजा गया, हिजाज और शाम के दरमियान का इलाका है। मदियन असल में मदीना ही है, पहले दौर में लोग शहरों को मदीना कहते थे, जैसे नबी सल्लम के नाम पे मदीना तो नबी जो आ जाए, असल में इसका नाम यसरत था, लेकिन जब नबी सल्लम आए तो उसको लोग मदीना तो नबी कहने लगे और उसी को आज हम सिर्फ मदीना कहते हैं, ठीक है। तो मदीना जो है ये सिटी के मानों में आता है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिस कौम की तरफ भेजा था वो कौन थी, कहां से ये आए थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का तस्करा तो हमने बहुत पढ़ा ना पीछे, इस्माइल और इसहाक, एक की नस्ल से बनी इसराइल और एक की नस्ल से बनी इस्माइल, यानी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनकी एक तीसरी बीवी भी थी, कतूरा जिसका नाम था, गैर मारूफ है ये बीवी। इनके वतन से एक बेटा पैदा हुआ था जो तीसरा बेटा था इब्राहिम का, और उनका नाम जो था वो मिदियान था। मिदियान की निस्बत से मदीना और मदीना से फिर इनका शहर जो था मदियन कहलाया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कब भेजा, जब इस कौम के अंदर हेरा फेरियां आ गई, इस कौम का जो मसला था वो नाप तोल में कमी भी थी, और चाहते क्या थे कि बिजनेस मैटर्स को दीन से अलग रखो। कारोबार से क्या ताल्लुक है नमाज का, कारोबार से क्या ताल्लुक है दीन का, हम बस मस्जिदों में जाते हैं, चंदे देते हैं, नमाज भी पढ़ाते हैं, हमें इससे ना रोका जाए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम इस कौम, हम देखेंगे इस सूरत में इनका बड़ा खूबसूरत अंदाज भी बात करने का, इनका लकब है खतीबुल अंबिया, नबियों के खतीब। इतनी मुदल्लल और खूबसूरत और दिल में उतरने वाली बात करते थे कि लोग दंग रह जाते थे इनकी बात को सुनते हुए। इन्होंने जब अपनी कौम में बिगाड़ देखा तो इन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, कैसे की, आइए अब जरायतों को देखिए। और आज के सबक को पढ़ते वक्त आपने एक चीज अपने सामने रखनी है, दौलतमंद और कारोबारी लोगों को तबलीग कैसे करनी है, यानी जिनके इर्द गिर्द रिश्तेदार और दूसरे जो लोग हैं अगर उनके अंदर कारोबार का रिवाज है तो आपको आज के सबक से बहुत खूबसूरत नुक्ते मिलेंगे कि मर्दों को ऐसे मामला जिसमें दीन और आज के तर्ज आमदन कह लीजिए या सोर्स ऑफ इनकम जो है इसके अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए तो उस वक्त क्या तरीकेकार होना चाहिए। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं आयत 84, वह इलामत जन अखाखुम शुएबा, और हमने मदियन वालों की तरफ इनके भाई शुएब को भेजा। देखिए वही अंदाज है जो पीछे भी गुजर गया कि इनकी तरफ भी अल्लाह ताला ने इनके भाई को भेजा, नस्बी निस्बत है, नस्ब की निस्बत है, ताकि आपस में क्लैश ना हो और एक दूसरे के दुख सुख को समझने लगे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने इनसे क्या कहा, काला या कौमी बुदुल्लाह, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, क्योंकि मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, इसके सिवा आपका कोई इलाह नहीं है। ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कौम में शिर्क था। हर नबी की तौहीद का बुनियादी नुक्ता हमेशा ए बुदुल्लाह या सो बुदुल्लाह या इया का ना बुदु रहा। जब कौम अल्लाह की बंदी नहीं रहती, जब बंदगी निकल जाती है ना, तो उसके बाद इंसान के जहन से अल्लाह का तसव्वुर मिटता है और इंसान ये भूल जाता है कि अल्लाह के हुक्म की भी परवाह है। और हकीकत में अल्लाह के मुकाबले में दूसरे को अहमियत देना यही तो शिर्क है। एक तरफ नमाज थी और रोजा था और दूसरी तरफ दीन था। तो वो कहते हैं कि देखो माली मामलात में अल्लाह की बात को समझो, गौर करो और देखो वला तनकुसुल मिकयाल वल मीजान, और ना कम करो माप और तौल को। देखिए सिर्फ एक जुमला है, बल्कि पूरा भी नहीं, अभी आधा जुमला है। दो बड़ी बड़ी खराबियां जो कौम की थी उसका उसकी तरफ इशारा हो गया। सोबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु में उनकी बड़ी बीमारी, जिसको आप कह सकते हैं कि जो मर्ज अकबर था उनका शिर्क, उसकी तरफ बात चली गई। और वला तनकुसुल मिकयाल वल मीजान, माप तोल में कमी ना करो। ये था आफ्टर इफेक्ट ऑफ शिर्क, सीक्वेंसेस ऑफ द शिर्क। अल्लाह को उसका हक ना देने की वजह से जो चीज खराब होती है ना, जो पैदा होती है, उसकी तरफ इशारा कर दिया कि जब अल्लाह ने तुम्हें इतना कुछ दिया है तो फिर क्यों थोड़े की कोशिश करते हो। इन्नी अराकुम भी खैर, मैं तो तुम्हें असूदा हाल देखता हूं, असूदा हाल देखता हूं तुम्हें, तुम बहुत अच्छे हो, वेल ऑफ हो। या खैर से मुराद भलाई ना कहिएगा। अरबी जुबान में खैर का लफ्ज और खास तौर पर कुरान पाक में दो मुख्तलिफ मानों में आया है, कभी एक मानी में आता है कभी दूसरे में आता है। खैर का मानी खैर के मानों में, राइटियस डीड्स, ठीक है, खैरात जिसकी जमा खीरत उन खैरात। लेकिन खैर का मानी माल के लिए भी आता है। पहली खैर तो बहुत जगह है, जैसे यहां अभी आपको बताती हूँ, दूसरा मानी आता है। आमतौर पर खैर का लफ्ज कहा आता है फस्तबिकुल खैरात, पढ़ा आपने पीछे सूरत बकरा में, कि वैसे छोड़ो, हुज्जते छोड़ो, फिरका वारियत छोड़ो, बल्कि भाग भाग के नहीं क्या करो, दौड़ो, ठीक है। लेकिन खैर का लफ्ज माल के लिए कहां कुरान में आए, सूरत आदियात, इन्नहु लिखुबिल खैरी लशदीद, कि बेशक इंसान माल की मोहब्बत में बड़ा शदीद है। अगर दूसरा तर्जमा करें तो मानी बदल जाता है कि इंसान नेकियों की मोहब्बत में बड़ा शदीद है, हालांकि ये फैक्ट नहीं है। तो यहां खैर से मुराद दूसरा मानी है, यानी मैं तो तुम्हें खैर के साथ देखता हूं, तुम्हें खाता पीता देखता हूं, तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे हैं। वइन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौम मुहीत, मैं तुम्हें तुम पर एक ऐसे जबरदस्त दिन के अजाब से डरता हूं जो तुम्हें घेर लेगा। फिर आगे थोड़ी बात की, इस पे इकट्ठी आगे बात होगी, आयत 85। व या कौमी, और ऐ मेरी कौम, देखिए कौम का अपना कहना नहीं छोड़ा, प्यार मोहब्बत, जब तक लोगों से प्यार नहीं करेंगे लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। जो गुनाहगार हैं, जो मुशरिक हैं, जो नाप तोल में कमियां कर रहे हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो गबन कर रहे हैं, उनको कहा जा रहा है या कौमी, ओ माई पीपल, ओ मेरे लोगो, औफुल मिकयाल, पूरा पूरा दिया करो पैमाना, वल मीजान, और तोल करो बिलकिस्ती, अदल और इंसाफ के साथ। दो लफ्ज आ रहे हैं यहाँ, एक है मिकयाल कैल से है और दूसरा है मीजान। आप इसको इंग्लिश में बिल्कुल समझ जाएंगे अच्छी तरह। लिक्विड्स को किस चीज से नापते हैं, लीटर्स, ठीक है, और गैलन्स, ठीक है, और जो ड्राई चीजें होती हैं उनको हम किस में डालते हैं, किलोज एंड में। तो मिकयाल क्या है, लिक्विड्स को नापना कैल से, ठीक है, और जो मीजान है वो आम है। मीजान से मुराद क्या है, कि जिसको तराजू में रख के तोला जा सके। मतलब क्या है कि जब तुम किसी भी चीज को तोलते हो, किसी भी चीज से कोई मामला लेके आते हो, तो उसको तुम डंडी ना मारा करो। और वला तबखसुन्नास, और ना कम किया करो। तबखसु का लफ्ज है ना बखीसा से है, बखसुन से, बखासिन, मामूली सी कमी। बास ने तबखसु से मुराद लिया है आर्टिफिशियल शॉर्टेज, जखीरा अंदोजी, ये मानी बहुत अच्छा है इसका, जखीरा अंदोजी ना किया करो। बस दफा कारोबारी हजरात जो होते हैं अपनी चीज को महंगा करके बेचने के लिए आर्टिफिशियल किस्म की शॉर्टेज पैदा कर देते हैं मार्केट में, चीज नायाब हो जाती है, शोर मच जाता है कि फला चीज नहीं है, फिर एकदम अंदर से वो चीज निकालते हैं और मुंह मांगी कीमत लाते हैं। बस कहते हैं कि तब खसूस मुराद जहां इस चीज की तरफ इशारा है कि लोगों में चीजें मत कम ना किया करो। वला तासुफ अल-अर्ज़ मुफ्सिदीन, और जमीन में मुफ्सिद बनकर ना फिरो। ये जो तासु का लफ्ज है ये पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, याद है आपको, इस बनी इसराइल में, हाँ, आइन था या, इसके दो रूट होते हैं, आइन था और या, असी से और आइन या सा, यानी उन्हीं लफ्जों को चेंज कर लें। अगर पहला हो ऐसा फसाद जिसका सोर्स नजर ना आए, मिसाल आपको पीछे दी थी दोहराती हूं, सर्दियों के कपड़े आप बड़े आराम से संभालते हैं, लेकिन जब 4-6 महीने के बाद निकालते हैं तो उसमें जगह 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 छेद हो चुके होते हैं, प्योर वूल के स्वेटर्स खासतौर पर। पता क्या चला कि कोई कीड़ा ऐसा घुसा कि जिसने अंदर ही अंदर उसको खा लिया, लेकिन कीड़ा आपको नहीं दिखता, ठीक है। तो असा कहते हैं वो फसाद, फसाद फैलाने वाला ना नजर आए, चुपके चुपके अंदर से जड़ें काटना। ऐसे लोग भी होते हैं बहुत सारे, पता नहीं चलता लेकिन अंदर से वो नुकसान दे जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसको आप आइन या सा से लेंगे तो ये हिस्सी फसाद है, यू कैन फील इट, महसूस कर सकते हैं उसको जो नजर आए। मसलन कोई किसी को कत्ल कर जाता है तो फसाद है, कोई चीज तोड़ देता है, सामने बैठ के किसी के आगे कोई चीज ले आता है, तो यही बात कह दी कि हिस्सी फसाद भी ना करो और दूसरी बात ना करो। मतलब यह है कि लोगों को नजर आने वाला नुकसान भी ना दो और ना नजर आने वाला नुकसान भी ना दो। आप देखिए कि हुक्मी में फसाद को कैसे समझेंगे कि किसी का शीशा तोड़ा, ईंटें उखेड़ दी, ठीक है। अब साफ पता चलेगा, कोई आएगा आपको कहेगा ये मेरे घर की टाइलिंग कौन तोड़ गया। लेकिन बाज दफा जड़ों को घुन लग जाता है, दीमक आ जाती है, पता भी नहीं चलता, ऊपर से बिल्कुल दीवार सीधी है, एकदम हल्का सा चोट लगेगी वो गिर जाएगी, ये अंदर का फसाद होता है। बिल्कुल यही चीज यहां बताई गई है कि कारोबारी मामलात में अगर लोगों को ये साबित करते हो कि हम तुम्हारे बहुत सिंसियर हैं, हम तुम्हें जो चीज पेश कर रहे हैं ये बहुत तुम्हारे फायदे की है, तब उसके अंदर चोरी छुपे ढके छुपे कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसी चीजें ना डाल दो कि बाहर लोग उसको अपना फायदा समझ के इस्तेमाल करें लेकिन उसमें उनका नुकसान हो जाए, ठीक है। और ये जो लफ्ज है ना मिकयाल, इस्माला है अरबी जबान में, इस्माला टूल्स के लिए, नापने के आले को कहते हैं, ठीक है। अब यहां आप देखिए कि ये बातें करके उन्होंने लोगों की बुराई का इजहार किया कि लोगों में क्या बात थी। इससे पता क्या चलता है कि जो लोगों में बुराई हो उसका तज़किरा जरूर करना चाहिए। बाज़ लोग बहुत ही बुरा मनाते हैं इस बात पे कि हमारी चीजों को पॉइंट आउट क्यों किया गया, इसलिए कि आप में वो थी। डॉक्टर के पास कोई जाए और कहे कि डॉक्टर हमारी बीमारी क्यों पेश करता है या हमें क्यों कहता है कि तुम्हारे अंदर ये खराबी है ये खराबी है, तो फिर आप इतने पैसे दे के क्यों जाते हैं। तो लिहाजा नबियों ने इधर उधर की तबलीग नहीं की के बात कुछ थी और कह कुछ दिया, ये सोचकर कि लोग बुरा ना माने। अब डॉक्टर अगर ये कह दे कि अच्छा अगर मैंने इनको इनकी बीमारी बता दी तो ये तो बहुत माइंड कर जाएंगे, तो आप देखिए फिर उस डॉक्टर के पास कोई जाएगा। बल्कि जो डॉक्टर सही रिसर्च करे और टू दी पॉइंट आपको बता दे और बाद में उसकी बात सच साबित हो, हम कितना लोगों को खुशी से बताते हैं। उसने तो नफ्स देखते ही बता दिया कि तुम्हें ये तकलीफ है, दूसरे तो इतने टेस्ट करवाते हैं फिर बताते हैं। तो नबी जो होते हैं ना ये हमेशा बीमारी देखकर उसका इलाज करते हैं। फिर दूसरी बात देखिए कि यहाँ कौम शुएब के तस्करे में अल्लाह के हकूक में कमी की भी बात आ गई है और बंदों के हकूक में भी। कैसे? सोबुदुल्लाह, जब अल्लाह की बंदगी का हक कोई नहीं देता तो अल्लाह का हक मारता है, और नाप तोल में कमी बेशी जो होती है इसको, इसमें बंदों के हक होते हैं। तो गोया के अल्लाह ने नबियों को जब भेजा तो उन्होंने हकूकुल्लाह भी सिखाए और हकूकुल इबाद भी सिखाए। फिर अगली बात देखिए कि कौम शुएब पैसा कमाने में मगन कौम थी, माल की मोहब्बत में चूर थी। जितना माल ज्यादा हो दिल से माल की मोहब्बत निकलनी चाहिए ना, देखिए ऐसे ही होता कि नहीं। आपको भूख लगी हुई है तो खाने की मोहब्बत ज्यादा है ना, जो जो खाना खा ले तो उस वक्त फिर उसकी मोहब्बत कम हो जाएगी ना, लेकिन माल के साथ बिल्कुल उलट मामला है। माल जितना ज्यादा होता है उतनी माल की मोहब्बत और लगती है। ये तो ऐसे ही है कि जो खाना खाते जाए और उसकी भूख और बढ़ती जाए, बस खाने भी ऐसे होते हैं जो और भूख लगाने वाले होते हैं। तो इस कौम का हाल क्या था कि इनको अल्लाह ने माल दिया लेकिन सीधे तरीके से माल कमाते बहुत था उनके पास, तभी तो वो कह रहे हैं कि लोगों तुम्हें मैं खैर में देख रहा हूं, लेकिन लोग छोटी छोटी हेरा फेरियां करके और माल कमाना चाहते थे। ये जो लोग बात है ना कि लातन कुसुल मिकयाल या मुतफिफीन, सूरत पूरी एक सूरत है इस पे कुरान पाक में, वैलुल लिल मुतफिफीन अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन्नासी यस्तौफून, ये वो लोग हैं जब लोगों को देते हैं तो और पैमाने रखते हैं, और जब खुद लेते हैं तो दूसरों के लेते हैं। तो समझ लीजिए कि मुतफिफ क्या होता है। तफिफ ता तो फाफा इसका रूट होता है, बहुत बड़ी चीज में से थोड़ी सी चीज चुरा लेना। बस आप देखिए, कोई किसी को 1 किलो दाल देता है तो 1 किलो में से कितनी दाल ले लेगा? आधा किलो तो नहीं चुरा सकता ना, एक पाव भी नहीं चुरा सकता। वो चंद ग्राम दाल, 1-2 चम्मच कम करेगा ना, वो इतनी थोड़ी सी चीज कमा के लोगों को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर पता चल गया तो लोग उसके पास आएंगे नहीं। तो यहां क्या पता चलता है कि छोटी छोटी हक तलफियों से भी बचो। और आप देखिए कि क्या वो बंदा है अल्लाह। मैं बहुत सोचती हूँ कि अल्लाह ने एक पूरी सूरत इस पे क्यों उतार दी, इसलिए कि ये थर्ड क्लास बंदा है। कोई बड़ा चोरी फ्रॉड का कोई केस हो तो बंदा माने भी कि भाई किसी ने कोई बहुत बड़ा लठ मारा, तो 1 चम्मच दाल 1 किलो में से चुरा के आपने क्या किया? अपने छोटे होने का सबूत दिया। अल्लाह को ये बंदा बहुत ही डिग्रेडेड लगता है कि जो लोगों को देने लेने में छोटी छोटी डंडियां मार दे। तो लिहाजा यहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने ये बात बता दी, कनात करो और देखो अल्लाह ने तो तुम्हें सब कुछ दिया हुआ है, किस चीज की कमी है तुम्हारे घर में? ये तो बिल्कुल ऐसे है कि जिसके घर में खूब फ्रिज भराओ खाने का, और वो जाके अपने हमसाये के घर से एक फ्रिज में से टमाटर चोरी कर ले, क्या कहेंगे आप उसको? आप कहेंगे तुम्हारा तो अपना फ्रिज भरा पड़ा, चाहे अपने फ्रिज का जाया हो जाए, लेकिन वो कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। यही कैफियत है इधर, कि इनका मामूल था, आदत थी। जब कोई इनके पास चीज बेचने आता तो उसे और वजन से लेते, ज्यादा चीज लेते, और जब कोई इनको देने आता तो ये अपने हिसाब से चीज को लेते। तो कहा जा रहा है कि देखो अल्लाह ने तुम्हें दिए है, कनात करो, शुक्र करो। बकीयतुल्लाह की खैर, अल्लाह की बचत बेहतर है। ये जो बकिया लफ्ज़ है ये बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ सेविंग्स के मानों में। इनको अपनी जरूरियात जिंदगी की फिक्र नहीं थी, वो बहुत था। क्यों और माल जमा कर रहे थे? सेविंग्स के नाम पे। आज के दौर का पसंदीदा टॉपिक है आपकी सेविंग्स, सेविंग अकाउंट्स, सेविंग सर्टिफिकेट्स, सेविंग। आपने अपने एक नाम पे कोई ऐसी सेविंग स्कीमें खोली हुई हैं कि जिससे फायदा होता है, तो वो कह रहे हैं कि देखो जो अल्लाह की तरफ से सेविंग्स है, जो बचत है, जो जायज नफा मुराद है इधर तुम्हें मिलता है, वो काफी है। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम सच्चे हो, यानी इंसाफ के साथ पूरा पूरा नापो और तोलोगे, लोगों की चीजों में कमी बेशी नहीं करोगे, तो देखना दयानतदारी से काम करना, उसमें तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। वमान अलैकुम भी हफीज, और देखो मैं तुम पर कोई निगरान नहीं हूं, यानी मैं तो समझा सकता हूँ, नेकी की तलकीन कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरा तुम पर कोई जोर नहीं चलता। तो लिहाजा ऐसे लोगों को समझाया गया। अब अगर आप इस सारी चीज को सामने रख के आज के दौर के निजाम पे थोड़ी सी बात समझ लीजिए, तो आपको बात बहुत अच्छी तरह समझ आएगी। आप देखिए कि मिसाल है कि आज के दौर का सबसे बड़ा फसाद या तासव जो है वो क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने परसेंट होता है? 5, 10, 2, 3, जितने भी परसेंट है। लोग किसी कारोबार में इंटरेस्ट को जब शामिल करते हैं, 100% इंटरेस्ट तो नहीं चल सकता ना, 50% भी नहीं चल सकता, 40% भी नहीं चल सकता। इंटरेस्ट कितना होता है? 2-3%। और इसी पे 1-2% पे इधर से उधर चीजों को करते रहते हैं। क्या 2-3% से इंसान के माल में ज्यादा इजाफा हो जाएगा? जो असल उसके पास 97 है, उसको एक साइड पे करके सिर्फ इस 3% को क्यों अपने लिए रिस्क देने वाला निजाम बना लिया? तो यहां सिखाया जा रहा है कि जब गैर इस्लामी तरीके कमाई में आ जाते हैं तो अल्लाह की तरफ से बरकत चली जाती है। ये मतलब है बकीयतुल्लाह की खैर। अब देखिए कि बाहर खुशहाली दिखती है, दौलत की रेल पेल होती है, लेकिन अंदर से मकरूज है। आज पूरी दुनिया का हाल देख लीजिए, हमारे जैसे मुल्कों से लोग जब अमेरिका, कनाडा और चाइना और इधर उधर के जो बहुत असुदा हाल मुल्क समझे जाते हैं आते हैं, जैसे लगता है कि एयरपोर्ट से उतरेंगे ना तो आगे हमारे लिए डॉलर्स बरसेंगे और हूरे हमें लेने आएंगे इस्तकबाल करने। बाहर रहें, जब आप अपने मुल्कों में रहें तो इन मुल्कों का क्या कॉन्सेप्ट आता है? जन्नत, वाह सुभान अल्लाह। और अपेरेंटली जब हम यहाँ आके रहते हैं तो भी हमें दिखता है कि इनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, घर इनके साफ है, सड़कें इनकी टूटी हुई नहीं, घरों में टूटियां नहीं बहती, एवरीथिंग इज ओके। ये तो है वो जिसको कहते हैं कि ऊपर का हाल, लेकिन अंदर से देखें तो क्या? बंदा बंदा, बच्चा बच्चा, मकरूज, कर्जों में है, इंटरेस्ट के हैं, कि क्रेडिट कार्ड के खर्चे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत है, लेकिन हाल के लिव बियॉन्ड द लिमिट्स। इसको लिख लीजिए, ये बात आपको समझ आ जाएगी कि इन्नी अराकुम बे खैर, मुझे तो तुम बहुत अच्छे हाल में दिखते हो, और मुझे क्या पता कि ये घर तुम्हारा नहीं है, मुझे तो यही पता है कि ये तुम्हारा घर है। अब इसका तो सिर्फ 10% तुम्हारा है, बाकी तो तुम्हारा नहीं है, मुझे तो ये नहीं पता। बज़ाहर देखिए, इस्लाम की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे बड़े एक जुमला बोलते थे, चादर देख कर पाँव फैलाओ। और इसको अल्लाह के नबी की एक हदीस से हम बहुत खूबसूरत तरीके से समझ सकते हैं, और वो क्या है कि मा आला मन इक्तसिद, चार लफ्ज हैं, मा आला मन इक्तसिद, मा मैंने नहीं, आला मैंने गरीब होगा, अयाल नहीं होता अहलो अयाल, वही लफ्ज है, औल कहते हैं बोझ को, यानी कभी भी वो शख्स गरीब नहीं होगा, मुख्ताज नहीं होगा, मन जो इक्तसिद बीच की राह चले, म्याना रवि से चलने वाला शख्स कभी गरीब नहीं होता। और इस बात की गवाही देने के लिए आप अपने खानदान के 10 लोगों को देख लें, जब से आप पैदा हुए आज तक उनके हालात बस एक ही जैसे हैं, कोई जॉब्स नहीं उनकी बड़ी, कुछ नहीं उनके मर्दों की, लेकिन चल रहा है उनका गुजारा बहुत अच्छी, उनके हालात स्टेबल रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरियन है सूद की और गैर सूद की चीजों को कह लें, या थोड़े से सोर्स ऑफ इनकम में जब गड़बड़ होती है तो क्या होता है कि कभी आप यहां खड़े हैं और कभी फटक करके नीचे गिरते हैं, यूं का ग्राफ चलता है। ये है वो चीज जिसमें कुछ गड़बड़ें होती हैं। और कुछ लोगों को आप शुरू से एक लेवल पे देख रहे हैं, मिसाल है वो गरीब हैं, चले जॉब करते हैं, उनके मियां किसी अखबार कंपनी में काम करते हैं, पहले 5,000 तनख्वाह हो गई, अब 6-3,000, अब 10 पे पहुंच गए, उनकी जिंदगी एक स्टेबल चल रही है। बहुत कुछ कोई जिंदगी में बिग चेंज ही नहीं आती कुछ लोगों के, क्योंकि ना बच्चा है कि जो आगे मिले कोई, और ना उनका कोई उनका बॉन्ड ही निकल आए, या कोई और ही कोई उनको कहीं से खजाना मिल जाए, वो पूरी जिंदगी एक जैसे रहते हैं। आपके हमारे खानदानों में 20 लोग ऐसे हैं, ठीक है ना, उनकी जिंदगी स्टेबल है। कुछ लोग हैं जो आपको बहुत अमीर दिखते हैं बाहर, खानदानी रईस जिसको हम कहते हैं, उनके पास मुंह में चमचा लिया हुआ, ये जो मुंह का चमचा है ना, इसको आप समझ लीजिए, अगर उसमें अल्लाह की नाफरमानी का काम नहीं है तो ये अल्लाह की तरफ से बरकत है। लेकिन जिंदर ये जो फ्लक्चुएशंस आती है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, आज डॉलर इतने का तो आज डॉलर इतने का तो आज इतने का, इसके अंदर गड़बड़ है, ये सारी गड़बड़े जो बताई गई, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि जब बंदा अपनी लिमिट से ऊपर जाके जीता है तो फिर उसका हाल यह। आज ये बड़ी बड़ी हुकूमतें ये मकरूज हैं, इधर रहने वाले आम लोगों की जिंदगी इतनी दोबर है। आप देखिए कि हमारे मुल्क के गरीब है ना, आप उसको 100 का नोट दे देंगे, हो सकता है वो अपने बच्चों के लिए चलो 4-6 रोटियां कोई सालन लेके चला जाएगा, लेकिन जो लोग गैर मुल्कों में गरीब है, यानी बड़े मुल्कों में गरीब है, उनका 100 रुपए क्या 100 पाउंड से भी कुछ नहीं बनता, उनको पहले तो 400-500 पाउंड चाहिए जिससे वो अपने कमरे का किराया दे सके। तो हकीकत यह है कि यहां वो सारी बातें अल्लाह ताला ने हमारे सामने रख दी, जो पढ़ते हुए तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये माजी की बातें हैं, ये आज की बातें हैं। अल्लाह के फैसलों पे यकीन करें। आपने नोट किया होगा कि सूरत हूद में माली मामलों पे बहुत बात हुई, पहला सबक ही ये था, वमा मिन दाबतिन इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, और फिर कौमों की पकड़ से भी ये बता दिया गया कि अल्लाह ताला की तरफ से जब कौमों की पकड़ आई तो वो सुपर पावर्स पे आई, ये सारी कौमें जो थी दौलतमंद थी, खाती थी पीती। अब चूंकि पहले दौर में तो चूक नबी आते थे तो ये सब होता था, तो हम कहते हैं कि ये अजाब है, पकड़ है, आज हम इसको कहते हैं ये इकोनॉमी ड्रॉबैक है, ये हो गया। अगर आज भी कोई नबी होता और आज भी लोग नबी को छोड़कर यही तरीके अख्तियार करते जो करें, तो हम कह सकते थे कि अल्लाह की पकड़ है। कैसे बड़ी बड़ी हुकूमतें डूब जाती हैं और मामले पीछे चले जाते हैं। हम सबके लिए इसमें क्या है कि जायज मुनाफा बहुत खूबसूरत बात है, जरूरियात जिंदगी पूरी करें, घर को देखें, घर वालों को, रिश्तेदारों को, जिनके हक हाँ उनको दें, सदका खैरात करें, कुछ बच जाए नो प्रॉब्लम, आप बचा सकते हैं। लोगों के ऊपर इतने बड़े बड़े खर्चे ही नहीं होते थे जिसके लिए वो इतनी लंबी चौड़ी जमा करके रखें, लेकिन सुकून होगा, कनात का दर्स है। सूरत अलनाम में क्या पढ़ चुके हैं, बल्कि सूरह आराफ में पढ़ चुके हैं, माल के हरीस को किससे मिसाल दी गई थी, यलहस, कुत्ते की तरह जुबान लटकती है। और यकीन करें जिसके पास माल ज्यादा होता है वो उतना ही कम माल को एंजॉय करता है, बड़ा घर है तो घर में रहना ही नसीब नहीं होता, आज इधर उज उधर बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो अपने घर वालों को वक्त नहीं देते। इसके बरक्स सफेद पोश लोग हैं, जायज तरीके से खाते पीते हैं, अपनी जिंदगी को चलाते हैं, तो वो पता चलता है। तो नबी ये समझाता है कि देखो तुम ये कर लो, इसके बाद अब तुम्हारी मर्जी है, मैंने तो तुम्हें समझाना था। और कहते कि मदीन जो थी ये तिजारती मंडी थी उस वक्त की, हजारों का बिजनेस होता था, ओपन मार्केट थी, खुशहाल थे, लेकिन अंदर से जब नीयतें बिगड़ी तो उन्होंने लोगों से अपनी उनके हक से ज्यादा लेना चाहा, अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आ गई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लैसल गिनाउ बिल माल, दौलतमंदी माल से नहीं होती, बल्कि गिना है दिल की कैफियत। हमारे यहाँ कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, वही कैफियत इसमें दिखती है। अब ये तो सारी तिजारत की बातें थी, क्या जॉब में भी हेरा फेरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। टाइम पूरा ना देना, काम उतना ना करना, जान के काम को लटका देना ताकि ज्यादा घंटे हो, प्रोडक्टिव काम ना करना, कपड़ा सीने में से लेकर बाकी चीजों पे आप देखिए कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आदत पड़ जाती है तो इंसान उससे बच नहीं सकता। और बस ये बात करके आगे चलते हैं कि जो पेट में जाता है उसका असर फिर इबादत पे पड़ता है। अल्लाह ताला क्यों इतना ज्यादा माली मामलात पे बात करते हैं कुरान पाक में? क्योंकि ये वो रॉ मटेरियल है जो इंसान के पेट में जाता है और फिर उससे बाद नेकियों और बदियों की सूरत में फूटता है। कौम शुएब का भी वही नजरिया था जो आज कुछ मुसलमानों का भी हो गया कि दीन को अलग रखो, दुनिया को अलग रखो। वो चाहते थे कि तिजारत को दीन दुनिया में रखें और दीन सिर्फ नमाज में हो। इसीलिए अब देखिए जरा हजरत शुएब को ताना क्या मिलता है नमाज का। आयत 85, वया कौमी औफुल मिक्याल वल मीजान बिल किस्त, ये बात तो हो गई। आयत 86 देखिएगा, ये भी बात हो गई कि तुम अल्लाह ताला की बचत पे और उसकी तरफ से जायज नफे पे नजरें रखो। आयत 87, नमाज का ताना, कालू या शुएबू, कहने लगे या शुएब, पहले तो हाईलाइट कीजिए या शुएब। जाहिल कौमें अपने नबियों का नाम लेती हैं और उसको या कह के पुकारती हैं। अल्लाह के नबी की जिंदगी में भी किसी को जरूरत नहीं थी कि आपको या मोहम्मद कहे। सूरत हुजरात में हम पढ़ेंगे, बद्दू देहाती बेचारे सीधे साधे लोग कभी कभी आके आवाजें लगाते थे, या मोहम्मद उखरुज, ए मोहम्मद अपने हुजरे से निकलिए। तो उस पर फिर आयतें नाजिल हो गई कि नबी को उस तरह ना बुलाया करो जैसे आपस में बुलाते हो, यानी बड़े इन बंदे को बुलाने का अंदाज कैजुअल नहीं होना चाहिए, यानी यू यू करके ना उसको बुलाओ जैसे कि आपस में बुलाते हो। फिर दूसरी बात देखिए, सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते थे? या रसूल अल्लाह। कब कहते थे? जब वो आपके सामने थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए तो फिर या का लफ्ज हट गया, क्योंकि या खिताब का सीगा होता है। जो आज सामने मौजूद है हम उसको कह सकते हैं वो फलान, लेकिन जो आज मौजूद नहीं उसको हम या नहीं कह सकते। तो ये एक छोटा सा नुक्ता हमें पिछली कौमों से भी दिख रहा है। कौमे मूसा ने भी मूसा का नाम लिया और यहाँ शुएब की कौम, और ये कौन लोग हैं जो खुद को बहुत बड़ा समझते हैं? मूसा बेचारे को तो वो मौलवी समझा होगा ना उन्होंने, और हजरत शुएब को ये क्या कहते होंगे, ओ मौलवी साहब आपको क्या पता हमारे क्या मजबूरियां हैं। यानी अब मजाक का अंदाज, या शुएबू अस्सलातुका तामुरुका नत्रुका मा याबुदु आबाउना, ए शुएब क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें इस बात का हुक्म देती है कि हम छोड़ दें इनको जिनको पूजते आए हमारे बाप दादा? अब देखिए क्या शुएब अलैहिस्सलाम ने इनको नमाज का हुक्म दिया था? कोई शुएब अलैहिस्सलाम की तबलीग में नमाज का जिक्र भी हुआ था? नहीं हुआ। लेकिन ये एक दम नमाज की बात क्यों ले आए? इसलिए कि हर दौर में हर मुआशरे में नमाज को दलील बनाई जाती है। आज भी लोग किसी की कोई बुराई देखे ना तो नमाज को ले आते हैं, ये देखो नमाजी, ये देखो हाजी साहब, ये देखे दाढ़ी वाले, और किसी की जितनी लंबी बुराई बतानी उतनी लंबी, इतनी लंबी दाढ़ी थी और झूठ बोल रहे थे। यानी दाढ़ी बोल रख के झूठ नहीं बोल सकते, और जो बगैर दाढ़ियां रख के बोलते हैं उनकी तो मजबूरी है बेचारे, वो तो मोर्ड स्कॉट हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। ये है लेट डाउन करने का अंदाज। आप अपने ऊपर लें, आप लोगों को दीन की कोई बात सिखाएं और लोग उसको सड़कों पर खड़े हुए दूसरों के साथ डिस्कस करते हुए दिखे कि देखो तुम क्या करते हो, तुम अपनी नमाजों की ये बात करते हो कि हम अपने बाप दादा के तौर तरीके छोड़े कर दे, नहीं। औ नफल अन नफला औ अन नफल फी अमवाली नमा नशा, या तुम्हारी नमाज ये सिखाती है कि हम अपने मालों में अपनी मर्जी से तसरुफ ना करें। मतलब ये कि जी हमारा पैसा है आपको क्या लगे, आप कौन होते इसमें बोलने वाले, आपको हम चंदा दे नहीं देते, इससे ज्यादा ना हमारे मामलात में बोला करें। क्या हम अपनी मलकियत अपने साजो सामान को अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते? आज भी आप देखिए कि यही है जिसको सेक्रेट राइट ऑफ वर्शिप कहते हैं आज के दौर में, कि जी इस्लाम में मलकियत का क्या तसव्वुर है कि हम अपनी मर्जी से काम करें। लोग कहते हैं कि देखो अल्लाह ताला बीच में क्यों बोलते हैं। सेक्युलरिज्म का नाम आपने सुना होगा, सोशलिज्म का नाम सुना होगा। रशिया ने क्या दावा किया था, क्या नारा लगा था आपको पता? सारा दिन कमाते रहो और एंड ऑफ द डे जाके पैसे गवर्नमेंट के पास जमा कर दो। आप 20,000 कमा सके, आप 15,000 कमा सके, आप 5,000 भी नहीं कमा सके। सबने एंड ऑफ द डे जाके गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करना है और एंड ऑफ द मंथ आप सबको गवर्नमेंट एक ही जितना अलाउंस देगी। बेवकूफ है जो मेहनत करेंगे। जिसको 5,000 कमा के भी उतने ही अलाउंस गवर्नमेंट से मिलने हैं जो 20,000 वाले को है, तो 20,000 क्यों कमाए? फ्लॉप हो गया, डूब गई हुकूमत है। इस्लाम क्या कहता है समझ लीजिए, सब कुछ अल्लाह का है। लिल्लाहि मा फिस समावाती व मा फिल अर्ध। नंबर एक, इस सब चीजों का मालिक अल्लाह। दूसरी बात कि दुनिया का ये माल और साजो सामान इंसानों के पास अल्लाह की अमानत है, यानी मुझे और आपको अमानतन मिला। तीसरी बात ये है कि इस माल को अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी नाजायज चीजों पे नहीं ले सकते। फिर अगली बात यह है कि इस्लाम जिन चीजों को, जो भी चीजें हमें देता है, इसके बारे में हमसे हिसाब लेगा, जवाबदेही होगी। इस्लाम मलकियत के किसी मुकद्दस हक को नहीं मानता, क्योंकि ये माल और दौलत चंद दिन की अमानत है, अल्लाह के पास सब कुछ जाना है। लिहाजा हजरत शुएब को कौम ने ये ताना दिया कि तुम हमें इस पे क्यों रोकते हो, और देखिए जरा कैसी गुस्ताखी करते हैं। इन्नकल अंतल हलीम और रशीद, हाँ एक तुम ही तो हो जो बड़े बावकार और नेक चलन हो। ये हलीम और रशीद क्यों कह रहे हैं तंस? ये ताजीम और तकरीम नहीं है, ताने और इस्तेहजा के तौर पे। तुम इतने बड़े बनते हो, तुम अपने आप को बहुत नेक समझते हो, जरा आप अपने ऊपर लेके सोचे। आप दीन की दर्स दर्स देने जाएं और ये बातें करें, यानी मुझे तो समझ नहीं आती कि लोग दर्सों में या तो ऐसी बातें करते क्यों हैं, और जो बेचारे वो तो पढ़ने वाले करके देते हैं। यानी कुछ मुझे हालात से दिख रहा है कि कोई इसी इलाके में किसी ने इन दिनों में कुछ ज़कात के मौजू पे दर्स दिया, और उस पे उन बेचारी ने जो मौजू बताया वो ठीक ही होगा, और लोग आप उसको जुबान ज़द आम सवालों जवाब की सूरत में पूछ रहे हैं कि ये बताएं कि किसी के माथे पे लिखा हुआ है कि वो नमाजी है कि नहीं, और ये बताएं कि नमाज बेनमाजी को ज़कात दे सकते हैं कि नहीं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि छोटे छोटे जो चंक्स होते हैं ना, उसमें दीन को लेने का यही नुकसान होता है। आप 20 दर्स सुन लें, पिछले अगले जहां भी, मैं कोई ये नहीं कहती कि बहुत अच्छा दर्स हम देते हैं, लेकिन ये बात आपको मैं पूरे शौक से कह सकती हूँ, मैंने पब्लिक दर्सों में कभी फिक्ही मसले नहीं बताए, नेवर नेवर एंड नेवर। कोई भी पूछता है, कल के भी दर्स में जो हमारा शाम का कोर्स था, एक सिस्टर ने पूछा था मुझसे शबे बारात के बारे में या कुछ ऐसे, तो मैंने उनको गाइड किया कि सिस्टर आप ये वेबसाइट पे जाइए, इंशाल्लाह आपको लेक्चर दिखेगा, इसको सुन लें, पूरी बात सुन के आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, फिर आप कल आके मेरे से सवाल कर लें। मैं नहीं इस वक्त जरूरत रखती कि मैं आपको एक पंगा दे के यहां से भेजूं और आप पूरे 1.5-2 घंटे की क्लास को छोड़ के अगले घर में जाकर ये डिस्कस शुरू हो जाए कि वो कहती हैं कि शबे बारात मनानी है कि नहीं मनानी। बिल्कुल बेतुकी बात लगती है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात लगती है। अब वो बेचारे जो इल्म के नाम पे लोगों को देते हैं कि चलो इनके ज़कात के मसाइल ठीक हो जाएं, वो ठीक मसला बता रहे होते हैं, लेकिन वो ग्राउंड नहीं प्रिपेयर हुई होती। जो लोग उठ के गए बच्चों को लेने गए इधर से उधर से, अब एक मसला सुन के आगे मेरे तक कई सवाल आए हैं अभी इन दिनों में। आप बताएं कैसे होता है, ऐसे होता है? मैंने एक कभी जवाब नहीं दिया, मेरे पास इतना इल्म नहीं है कि मैं रात रहते बांटती भी रहूं। मैं उनको कहती हूँ हाँ देखिए किताबु ज़कात है, पढ़िए, इधर आइए, इस क्लास में भी हम रमजान में पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, आप सुन के देख लें। मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं अपने ऊपर लेके ये मसले बयान करूं। हदीस सामने खोल के दे दी, आप पढ़ लीजिए, कुरान की आयत है इसको समझ लीजिए, कर देते हैं। लेकिन जब लोग दीन के नाम पे शोशे उठाते हैं ना, तो इन बातों को उठाते हैं, लिटरली लिटरली लोग जो है इन बातों की वजह से दीन से रुक जाते हैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसी बात नहीं छेड़ी थी, लेकिन कौम जान के उनको गुस्सा दिला रही है कि अल्लाह करे ये हमारी इन बातों से नाराज हो जाए और हमसे रूठ जाए और इस काम को करना छोड़ दें, आप हमें छोड़ दें। अल्लाह ताला असल में लोगों की नफ्सियात बता रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को जब बुराई पे किसी को टोकता देखते हैं तो उसकी बुराइयां टटोलने लगते हैं। असलातु कदा अमरु, और यहाँ सलात का लफ्ज जो है ना, ये दीन के मैंने मनों में भी आया, क्योंकि नमाज दीन की अलामत है। पानी दुआ सलात ईमान के मानों में, ये तीनों मौजू कुरान में मौजूद हैं। सलात किरत के मानों में और सलात दीन के मानों में भी है, यानी नमाज, दुआ, ईमान, किरत और दीन, कि तुम्हारा दीन, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी किरत, तुम्हारी नमाजें तुम्हें ये हुक्म देती हैं कि तुम ऐसी ऐसी बातें करो। आप देखिए कि बात लोग दुनियावी मामलात में बहुत माहिर होते हैं, हर मार्केट में नजर आएंगे, बहुत वकूफ करना आता है, बार्गेनिंग करनी आती है, नए नए तरीके आते हैं, लेकिन वही लोग रातों को बुतों के सामने खड़े दिखते हैं, वहां सारी अकल खत्म हो जाती है। इंटेलेक्चुअल लोग हैं, लेकिन आप देखिए कि एक बेजान पत्थर के आगे खड़े हुए हैं तो क्या पता चला कि वो दिमाग जो पैसा कमाने में इतना माहिर है, वो बनाने वाले को पा ही नहीं सक रहा। क्यों? अकल पर पर्दा है, बाप दादा की मोहब्बत का और माल की मोहब्बत का। एक और चीज पता चली कि नमाज का ताना हर दौर में मिला जाता है। हजरत शेख अलैहिस्सलाम को नमाज से वाकई बड़ी रग़बत थी, फारिग वक्त में नवाफिल अदा किया करते थे, और ये अल्लाह से मोहब्बत की अलामत है, नमाज अल्लाह से ताल्लुक की अलामत है। और लोगों को ऐसा बंदा खटकने लगता है, वो कहता है देखना ये खड़ी होकर हमारे खिलाफ बद्दुआ कर रही है। एक सिस्टर ने कहा कि मेरे घर वाले मेरे दीन से इतने खुश नहीं थे, जो ही मैं नमाज पे खड़ी नमाज पढ़ी खड़ी सॉरी जब नमाज पे खड़ी होती थी तो मेरी सांस अनकंफर्टेबल हो जाती थी, तो कहती मैं नमाज पढ़ रही होती थी तो वो मेरे मुंह को हिलता देख के कहती थी देखो जादूगरनी मुझ पर जादू कर रही है, ये देखो ये मेरे ऊपर इसकी बपाल पड़ेगी। इसी तरह किसी के मियाँ को उनकी नमाजों से क्यों चिढ़ती कि ये नमाज पढ़ती है ना तो जो मेरे बारे में बात करेगी देखना पूरी हो जानी है, या मुझे बद्दुआ देगी। और यकीन कीजिए कि अल्लाह रोक डाल देता है, किसी को परवाह भी नहीं। अगला बंदे की पता नहीं नमाज में उसको सिर्फ फातिहा का भी तर्जुमा आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन नमाज पढ़ने वाले से लोग खौफजदा जरूर होते हैं, ये पक्की बात है। वो सोचते हैं कि ये अल्लाह से कुछ ना कुछ लेके आ जाएगा, ये हमारे शर से निकल जाएगा, तो कोई कुछ भी ना बोले उसकी नमाज का सर है। कभी कोई बंदा या बंदी आप पे ज्यादती कर रहा हो, चीखे चिल्लाए शोर करे या शाउट करे या बात करे, सीधा जाए नमाज पकड़े मसल्ले पे खड़े हो जाए, मार देगा ना आपको उसमें थप्पड़ तो मार दे, कोई आपके ऊपर कोई चीज मार देगा ना शीशे की मार दे, आप इसका एक असर देखेंगे। एक लफ्ज ना बोले उसके खिलाफ, ये नहीं कि पांव पटकती भी जाए नमाज पकड़े, ये नहीं करना, ये भी एक गलत एटीट्यूड होता है। कोई बंदा आपसे, कोई बंदे से बंदी मुराद तो एक ही है ना, कोई करीब का, कोई दूर वाला, कोई अपना, कोई बेगाना, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई साथी, आपको लग रहा है कि ही और शी इज मिसअंडरस्टैंडिंग यू, सीधा वजू करें जाए नमाज पकड़े हो जाए, आप जरा देखिए उनके चेहरे के रंग कैसे आते हैं, एक रंग आएगा तो एक रंग जाएगा, क्योंकि रोब होता है, नेकी का रोब होता है, ईमान का रोब होता है। और जब हम खुद बोल रहे होते हैं तो हम भी वैसे ही लग रहे होते हैं जैसा थोड़ी देर पहले वो हमें लग रहा था। फिर इसी तरह आप देखिए कि ये जो चीज समझ आती है ना कि मां नशा, आज भी बहुत सारे लोगों का ये मसला है कि माल हमारा है, हम जैसे मर्जी खर्च करें, हम अपनी बेटियों के 500 डॉलर के जोड़े बनाएं, या हम कई लाख का जोड़ा बनाए, हमारी मर्जी है, आपको क्या लगे। अपने बच्चों को और अपने घरों पे और अपनी जातों पे खर्च करवाते हैं तो असल में ये किब्र की भी अलामत होती है। बाज लोग कहते हैं कि आपको क्या, हमें तो किसी से कुछ नहीं लेना, लेकिन ये मैं लोगों की बातें आपको बताती हूँ कि बाज दफा बहुत इसराफ होता है, कसरत से खर्च करते हैं लोग, तो किसी से ऐसी बात हो रही तो उन्होंने कहा कि देखे जी जब उन्होंने इतना कमाते हैं, रिस्क हलाल है, तो क्या फर्क पड़ता है अगर 50-60 लाख 1000 पाउंड उन्होंने अपने बच्चे या बच्ची की शादी पे लगा दिया। तो जो दूसरे शख्स थे उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बात बताऊं कि जो बंदा मेहनत से कमाता है और बहुत ही खुदा खौफी से कमाता है वो इतना खर्च ही नहीं कर सकता, इजी कम इजी गोज वाली कैफियत है। तो हम तो किसी पे बात नहीं करते, लेकिन जरूरत की बात है। अभी चंद दिन पहले एक सिस्टर ने बताया कि 75 लाख 1000 1000 में थोड़ा कंफ्यूज कर जाती हूँ, 75,000 पाउंड एक शादी पे लगा और सिर्फ एक साल शादी ठहरी और टूट गई। दो दो मिसालें उन्होंने दी, पहली शादी पे 75 लगा था, फिर दूसरी शादी पे 80,000 लगा। मैंने कहा किया क्या उन्होंने, कहती हेलीकॉप्टर बुक कराया था, दूल्हा दुल्हन हेलीकॉप्टर पे उतरे थे कहीं, तो शादी फिर नहीं कामयाब हुई, उड़ नहीं सका ज्यादा दिन। याद रखिए मां नशा नहीं है अल्लाह नशा, अल्लाह चाहेगा जैसे वैसे खर्च करना। ईमान वाले के पास माल बहुत होता है लेकिन मां नशा नहीं, कई फये अल्लाह। حضرت عثمان کی مثال آپ کے سامنے ہے، حضرت ابو بکر کی مثال ہے، عبد الرحمن بن عوف کی ہے، وہ اپنی مرضیوں سے نہیں خرچ کرتے تھے. اور جو بندہ اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہوئے نہیں سوچتا نا، سوچ میں پڑ جائیے کہ پھر اس کا معاملہ کیا ہے. بیلنس ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ اللہ کے راستوں میں، لوگوں کی فلاح و بہبود پہ، خیر میں دیتے وقت بالکل نہ سوچیں، اللہ مالک ہے، دیکھیں گے کل ہوگا. اور جہاں اپنی ذات آ جائے، اپنے بچے کی ذات آ جائے، تو 10 دفعہ سوچے پھر دے. حلیم کا لفظ یہاں آیا ہے. حلیم کہتے ہیں تحمل، وقار اور متانت کو. ایسی کیفیت جو اپنے نفس اور طبیعت پر اتنا قابو رکھے کہ بھڑک نہ اٹھے شدید سے شدید غصے کے موقع پر بھی. حلیم کہتے ہیں وہ شخص جسے اپنی زبان اور اپنے نفس پر قابو ہو. چلیے آج کا سب سے مشکل سوال کرنے لگی ہوں آپ سے، صبح کے ٹیسٹ سے بھی مشکل. خود سے پوچھئے کیا میں حلیم ہوں؟ ہمارے تو سر سے پاؤں میں آگ لگتی ہے. دین کے کام کرنے والوں کو حلیم ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ دوسروں سے لڑنے کی بجائے اپنوں سے لڑ کے آ جائیں گے. ہوتا کیا کہ لوگوں کو جب اپنے لائف سٹائل پہ چوٹ پڑتی ہوئی دکھتی ہے نا، تو گھبرا جاتے ہیں، اور لوگ نماز چھوڑنے کو سوچ لیتے ہیں، غلطی نہیں چھوڑتے. اب آپ اپنے اوپر لیں، آپ کو کوئی یہ تانا دے تو آپ کیا کہیں گی؟ خدا حافظ، آج کے بعد میں نیکی کا کام نہیں کروں گی. اتنے اتفاق سے گئے تھے درس دینے، آگے سے یہ تانے مل گئے، توبہ توبہ اللہ کی بنا. لیکن یہ انا کے بڑے ہونے کی علامت ہے. نبی کا کام دیکھیے، نبی نے اس پہ کیا کیا کہ بس پکڑو اور ان کو ختم کر دو. ایک دوسروں کی ذات، جو اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں. اس کو بند کریں. جو اپنی ذات کے لیے کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے پر غور کرتے ہیں، مجھے کتنا فائدہ ہوا، کتنے لوگوں کو سکھایا اور میرے کتنے اسٹوڈنٹ بن گئے، اور دس اینڈ دیٹ. پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہر وقت اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کام اپنے لیے نہیں کر رہے تھے، کیونکہ جو کام اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے کرتا ہے نا، وہ اتنی کڑوی باتیں سن کر بھی کیا کہتا ہے؟ آیت 88 سے دیکھیے گا. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی. آپ نے فرمایا میری قوم کے لوگوں، ذرا سوچو کہ اگر میں پہلے بھی اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پہ تھا. وہی بات ہے جو پچھلے انبیاء اور رسل اپنے قوموں سے کہتے رہے کہ میرا اخلاق، میرا کردار تو نبوت سے پہلے بھی مثالی تھا، ایک شریف النفس اور سلیم الفطرت انسان تھا، علم اور دلیل میرے پاس موجود تھی. اب کیا ہوا؟ ورزقنی منہ رزقن حسنا، اللہ نے اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق بھی عطا کیا. یہاں رزق سے مراد کیا ہے؟ نبوت، مانوی رزق ہے، اور ظاہری مال و دولت بھی دی تھی. دیکھیے حضرت شعیب قوم کو مالی خیانتوں سے روک رہے تھے، اس کے باوجود بھی حضرت شعیب امیر تھے. یہ بڑا قابل غور نقطہ ہے، اس پہ توجہ فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کبھی بھی ایسے حال میں نہیں رکھا کہ لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ دیکھا دین والوں کا حال کتنا برا ہوتا ہے. ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت مال تھا. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے. غریب نہیں تھے، مال آپ کے پاس آتا بہت تھا، ٹھہرتا نہیں تھا. بات سمجھے؟ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانیاں کی، 63 اپنے ہاتھ سے کی، اور باقی حضرت علی سے کہا کہ آپ کریں. کہاں سے پیسہ آتا تھا؟ چندہ تو نہیں لیتے تھے، مال تھا رکھتے نہیں تھے. بات واضح. حضرت شعیب علیہ السلام باوجود اس کے کہ ایماندار تھے، بڑے اعلیٰ طریقے سے کماتے تھے، اس کے باوجود رزقنی منہ رزقن حسنا، اللہ نے مجھے بہت اچھا رزق دیا. دیکھو میں کھاتا پیتا ہوں، میں بھی تو اسی شہر میں رہ کے کاروبار کرتا ہوں، میری بھی تو تجارت ہے، میرا بھی بزنس ہے. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَمَا أُرِيدُ
अन उखालिफकुम इला मान हाकुम अन्हु, और मैं हरगिज नहीं चाहता कि जिस चीज से तुम लोगों को मना करूं खुद वही काम करूं। यानी जिस खयानत से, जिस हेरा फेरी से तुमको मना करता हूं, मैं खुद ऐसी हेरा फेरियां नहीं करता। मुराद क्या है कि वो दिखा रहे हैं कि आज के दौर में भी ये मुमकिन है, और देखो मेरे कॉल और फेल में कोई तो साथ नहीं। मैं जायज तरीकों से कमा रहा हूं, तुम भी कमा सकते हो। अल्लाह को भी खुश करता हूँ, अल्लाह के बंदों को भी खुश करता हूँ। मेरे कॉल फेल में वो तजाद नहीं कि तुम कहने लग जाओ क्या तामरून नास बिल बिर्री व तनसाउन अनफुसकुम। सूरह बकरा में हम पढ़ चुके, सूरह सफ की इब्तदाई आयतों में आता है, कबुर मक्तन इंदल्लाह अन तकूलू मा ला तफअलू। अल्लाह को ये बात बहुत बुरी लगती है कि तुम वो बात जो कहते हो वो करते नहीं हो, या जो बात कहते हो वो करते नहीं हो। हाँ मेरा सिर्फ एक काम है, इन उरीदु इल्लल इस्लाह, मैं तो कुछ नहीं चाहता सिवाय इस्लाह के। कितनी कब तक? मस्तता तू, जिस कदर मुझ में इस्तेदात है। हाँ वमा तौफीकी इल्ला बिल्ला, मेरी तौफीक तो अल्लाह ही की तरफ से है। यानी मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्लाह है, मैं खैर चाहता हूँ, तौफीक अल्लाह देता है। यहाँ देखिए कि मस्ततातु का मतलब से पहली बात तो समझिए कि दीन का काम आपने अपनी इस्तेदात के मुताबिक करना है, लोगों की बातों से छोड़ना नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी नफ्स को नहीं अल्लाह तआला किसी नफ्स को नहीं आजमाता उसकी वुसअत से ज्यादा, ठीक है। दूसरी बात क्या पता चलती है कि इंसानों की इस्लाह का काम सबसे मुश्किल काम है, तवील तवील सबर और मुशक्कत वाला काम है। और वमान तौफीक इल्ला बिल्ला, अल्लाह की तौफीक के बगैर ये काम नहीं होता। पहले तो लफ्ज तौफीक देखिए कितना खूबसूरत है, वो फा काफ वफक, उर्दू में मवाफकत का लफ्ज समझते हैं, मिलना, दो चीजों का मिलना, अल्लाह की मदद का किसी चीज में शामिल हो जाना, इसको मवाफकत कहते हैं। बंदा सुबह से उठ के बेचारा घर से निकलता है कि दिहाड़ी करूं, बच्चों के लिए कुछ कमा के लाऊं, वो निकला सारा दिन फिरता रहा फिरता रहा, कोई ग्राहक ही नहीं आया। अब हुआ क्या? वो तो निकला लेकिन अल्लाह की मदद शामिल नहीं हुई। बात समझ रहे? मिल भी गए पैसे, वापसी पे चोर ले गया, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स बंदा सुबह निकला, चलो रिस्के हलाल कमाता हूं, चलो कुछ पैसे कमा के लाऊं, अल्लाह की तौफीक मिल गई और अल्लाह ने उस दिन बहुत सारे कफ लोग दे दिए जिन्होंने उससे चीज खरीद ली, तो फिर क्या हुआ? तौफीक मिल गई। तो ये जो मैं और आप हर वक्त एक लफ्ज बोलते हैं ना, अच्छा अल्लाह तौफीक देगा तो कर लेंगे, झूठ बोलते हैं। अच्छा अल्लाह चाहेगा तो मैं कर लेंगे, ये लफ्ज तौफीक बड़ा खूबसूरत है। तौफीक के लिए शर्त है कि आप पहल करें, अल्लाह फिर आपके मदद करेगा। वही एक और जीरो जीरो की मिसाल याद रखे, पहले भी दी थी। और इस लफ्ज का काम मुश्किल कैसे है, इसको आप जरा अपने किसी कपड़े से सोचिए। आप देखिए कि आपने कपड़ा सिलाया, बहुत कीमती और बहुत नाजुक, और दर्जी ने उसको तंग सी दिया, खराब कर दिया। अब आप उस कपड़े के साथ क्या करेंगे? सख्ती से उसको धेड़ेंगे, जो थोड़ा बहुत ठीक था वो भी खराब हो जाएगा। इस्लाह के लिए नरम हाथों की जरूरत होती है। पतला सा वो एक होता है थ्रेड कटर, उसको लेकर फिर लोग धागों में डालते हैं, कपड़ा ना छिरे, उसमें खराबी ना हो। नरम नरम हाथों से आप उधेड़ना शुरू होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सिलाइयां निकालते हैं, फिर उसकी जगह और सिलाइयां लगाते हैं। इसीलिए याद रखिए कि इस्लाह के लिए नरमी की जरूरत है। माशरे में बिगाड़ तो बहुत दिख रहा है आपको भी, आज भी है कल भी था हमेशा रहा, लेकिन मुसलिह कौन होता है? खैर ख्वाही के साथ काम करने वाला। एक लफ्ज इबलाग, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, पहुंचा के आ गए, फेंक के आ गए दीन का पैकेज, मेरी जिम्मेदारी खत्म। रुख अपनी तरफ होता है ना कि मैं दे के आई हूँ ये मैसेज, दर्स मैं दे आई हूँ, किसी को पहुंचा कि नहीं पहुंचा फर्क है। इसके बरक्स किसी सोसाइटी में बुराइयां हों और आपको वहां भेज दिया जाए और आपको कहा जाए जरा इनकी इस्लाह करें, तो फिर इस्लाह के लिए हिकमत, हिल्म, रुश्त और वो सारी खूबियां चाहिए होती हैं जो इधर जरूरत है। इस्लाह वक्त लेती है, इबलाग फौरी हो जाता है। 23 साल में ये कुरान मिला नबी को, क्यों? बला इस्लाह थी। پہلے دن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر عربوں کی ساری برائیوں پہ چوٹ ڈال دی جاتی تو لوگ اتنے آرام سے دین کو نہ مانتے جتنا بعد میں لیا. سود جیسا ایشو سب سے آخر میں چھیڑا کیونکہ اس سے پہلے دلوں کی اصلاح ہو چکی تھی. تو لہذا کرنا کیا ہے کہ اپنے آپ کو اصلاح پہ رکھیں. اس کو آپ تھوڑا سا پیٹرن سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے آپ میں سے کوئی بچوں کے اسکول میں ٹیچ کرتی ہوں گی, پورا سلیبس ملتا ہے ان کو, ایک سال میں یہ پڑھانا ہے. ہم نے دیکھا کہ ٹیچرز کی نظر کیا ہوتی ہے, آج کا سلیبس پڑھو پڑھو, یہ بھی پڑھنا, یہ بھی کٹ 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 کٹ, کیونکہ انہوں نے اینڈ پہ آفس میں رپورٹ دے کے جانی ہوتی ہے کہ آج کا گول پورا, لیسن پلان پورا. اس کے برعکس دین کی تعلیم دینے والے کا کیا کام ہے, پورا کرو جان چھوڑو, نہیں, ارید و اصلاح. وہ آہستہ آہستہ رابطہ کرتا ہے اسٹوڈنٹ سے, آپ نے کیا سیکھا, آپ کو کیا پتا چلا, آپ کا کوئی سوال. اس کی نظر ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر اترے. اسٹوڈنٹ جو عام ہوتا ہے کہتا جا کے ٹیوشن پڑھ لینا, ہم بس کہنے والے بنیں گے کہ ہم نے یہ پڑھا دیا تھا. تو لہٰذا میں تو یہ کام کرتا رہوں گا مستتا تو جب تک میری توفیق ہے, اپنے آپ کو نچوڑ کے رکھ دوں گا تمہاری خاطر, آخری دن تک بھی میں زندگی کے تمہیں بتاتا رہوں گا. اور یاد رکھیے کہ ایسا شخص جو لوگوں کو اصلاح کرنا چاہتا ہے نا, پھر اس کو اللہ پہ توکل بھی کرنا پڑتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں علیہ توکل تو وعلیہ انیب, اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں, اس کے بغیر بات نہیں بنتی. ایسا شخص اس نعمت کو اللہ کا احسان سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے چنا کہ میں لوگوں کی اصلاح کا کام کروں. جب لوگ بگاڑ کی کوششیں کرتے ہیں, لوگوں کے اخلاق بگاڑتے ہیں, لوگوں کی نسلوں کو گندی تصویروں سے بگاڑتے ہیں, سارا دن سڑکوں پہ ادھر ادھر چلتے پھرتے, انسان کا دل کٹتا ہے کہ اللہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, انسانیت کو اتنے فتنے دیتے ہیں, تو اللہ تو نے مجھے اس میں اصلاح کی کوشش کی. پرسوں ایسی کسی ساتھی سے میٹنگ تھی, ہر طرف ہر وقت یہی باتیں ہوتی رہتی ہیں فون پہ. اب جتنے وہ کہتے ہیں بچے ہیں اتنے مسئلے, ایسے ہی ہے نا. تو جتنی کلاسز جتنے اسٹیشنس اتنے ساتھی, اکیڈیمک سے زیادہ مینجمنٹ کے مسئلے ہر وقت سامنے آتے ہیں. تو ایک کسی اور شہر کسی جگہ کی بات ہے, بہت پیاری سسٹرز ہیں وہ کام کر رہی ہیں وہاں. تو جیسے ہر جگہ نارمل ہے, میں اس کو بہت نارمل لیتی ہوں, لیکن ظاہر جو لوگ نئے نئے ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے. تو میں ان کو بالکل اس طرح طوطے کی طرح پڑھا رہی تھی, آپ نے وہ نہیں کرنا جو وہ آپ سے چاہتے ہیں, آپ نے یہ جھگڑا نہیں کرنا, آپ نے یہ نہیں کرنا, جب تک وہ آپ کو منہ سے نہیں کہہ دیتے کہ آپ یہ یہاں نہ آئیں, آپ یہ نہ کریں. تو وہ ہنستی کبھی روتی, آپ کو نہیں پتا استاذہ پہ کتنا پریشر ہے, آپ کو نہیں پتا. پھر جب میں نے ان سے جو بھی بات میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ کیا ہے کہ جب میں نے ان سے بند کی, میٹنگ ختم ہوئی, تو میں کھڑکی میں کھڑی ہوئی تو لٹرلی میں اللہ سے باتیں کرتے ہوئے رو رہی تھی کہ کل قیامت کے دن یہ میں اللہ آپ کو کہہ سکتی ہوں, پڑھانے میں, مینجمنٹ میں, ساتھیوں میں, میٹنگز میں, گروپ لیڈرز میں, اپنے میسیجز میں, آج تک کبھی کسی کو آدھے سے بھی آدھا نیگیٹو جملہ نہیں سکھایا. ذرا تم بھی تو کر کے دکھاؤ نا, کرو ذرا تم بھی ان کے مقابلے پہ. جن دو کے بیچ میں پھٹتا ہے دل, ان کو جوڑنے کی کوشش کی. میں نے کہا اللہ کل یہ قبول کر لینا کہ ہم نے اصلاح کی کوشش کی تھی. ہوئی ہے کہ نہیں, کس طرح کا کام ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا, ہماری کوشش ہے بس. لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی لوگوں کو نہ بڑائی سکھائی ہے اور نہ بڑا بننا سکھایا ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہی درد مندی ہے جس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس رنگ میں کہہ دیا کہ علیہ توکل. تو یہ توکل ہوتا ہے, اس پہ یقین ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی, کیونکہ جو سوسائٹی کو ہم دے رہے ہیں, ہم بگاڑ نہیں دے رہے, ہم گھر نہیں توڑوا رہے, ہم لوگوں کے بچوں کو کا دشمن نہیں ماں باپ کو بنا رہے, ہم ماں باپ اولادوں کو ماں باپ کے آگے بولنے والا نہیں بنا رہے, کیونکہ قرآن کی دعوت ہی ہے. اور اس کے بعد یہ باتیں اچھی نہ لگے تو وہی نہیں ہی انیب, پھر اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. یہ ہے بندہ مومن کی کہانی. لفظ انیب کو بھی سمجھ لیجئے نوب سے. منیب لفظ تو آپ نے سنا ہی ہوگا, نام بھی ہوتا ہے. یہ جو اردو میں ہم لفظ کہتے ہیں نا, نوبت اب یہاں تک پہنچ گئی, وہ بھی یہی ہے. تا کو ہٹا دیں, پیچھے نوب ہے. بار بار لوٹنا, دین کے کام میں انیب بنے بغیر گزارا نہیں ہوتا. لٹرلی کئی ایسے ایشو سامنے آ جاتے ہیں کہ بندے کا سر سجدے میں جاتا ہے اور بندہ پوٹ پوٹ کر روتا ہے, اللہ تو بتا میں کیا کروں. اچانک میسج آ جاتا ہے کسی ساتھی کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا, کسی پہ یہ پابندی لگ گئی, کسی کے گھر یہ طوفان اٹھ گیا, میں تو پھر جواب بھی نہیں دے پاتی, میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. لیکن الہی انیب, یاد رکھیے جس کا کام کرتے ہیں نا ہر لمحے اس کی ضرورت پڑے گی. لوگ تو دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا, آپ اللہ کے کام کرتے ہیں تو 5 کے ساتھ آپ کو شاید 50 بھی پڑھنی پڑے. 50 بار اللہ سے پوچھنا پڑتا ہے, اللہ تو بتا میں کیا کروں. جسے ہماری نا انگلیاں فون پہ بھاگتی ہیں نا, ذرا مشورہ لے لو. بندہ اللہ کی طرف جاتا ہے. دین کا کام کرنے اللہ کبھی خود کو خود مختار نہیں سمجھتا. اور آپ دیکھیے خطیب الانبیاء تھے, دنیاوی سٹیٹس بھی اچھا تھا, دلیل بھی تھی, خوبصورتی تھی, اس کے باوجود وما توفیق الا باللہ. آپ سکلڈ ہیں, آپ کو باتیں بہت اچھی آتی ہیں, واللہی ایسے ایسے فتنوں میں گر جائیں گے آپ کی زبان گنگ ہو جائے گی, سمجھ ہی نہیں آئے گا یہ ہوا کیا, اب میں اس میں کیا بالوں, میں اس میں کیا بولوں. لہٰذا اللہ سے تعلق کے بغیر آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. جیسے سیٹ بیلٹ لگائے بغیر ڈرائیونگ نہیں کر سکتا نا ڈرائیور, لا ہے نا. اسی طرح الیہ انیب, اللہ کے تعلق کی سیٹ بیلٹ لگانی پڑتی ہے اس راستے میں, ورنہ تو ایسا گھومیں گے کہ اللہ کی پناہ, جتنا آگے جاتے جائیں گے اتنا پھنس جائیں گے. پھر ہم نہیں سیدھے ہوں گے, لوگ ہمیں سیدھا کریں گے. آپ 10 لوگوں کو سیدھا کر رہے ہیں نا مل کے, مثال ہے آپ اکیلے ہیں, آپ 10 لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں, لیکن جس دن ان 10 نے مل کے آپ کی اصلاح کی نا, مانج کے رکھ کے دیں گے آپ کو. لوگ تو آپ کے اندر کے بھی بلکس نکال کے باہر رکھیں گے. پہلے آپ بتائیں آپ یہ کیوں کرتی ہیں. آپ لوگوں کو اچھی بات قرآن کی بتاتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں یہ اپنی بتا, وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کا کیا عمل ہے, آپ کے کیا کام لیں اور آپ کے کیا رویے. تو ایسے وقتوں میں جھگڑوں میں پڑنے کی بجائے لوگوں کے شعور کو بیدار کریں, پوری کوشش کی. اور اب جب بھی آخری گولی رہ گئی تو پچھلے لوگوں کی مثال دی آیت 89, میں یا قومی, اور اے میری قوم. اور یہاں سے آپ خطیب الانبیاء کا ٹائٹل ڈھونڈے کیوں ملا ہے, انداز دیکھیے کتنا پیارا ہے. ہم تو کب کے گیو اپ کر کے گھر جا چکے ہوتے ہیں, آنسو شانسو پوچھ کے اب چائے کا کپ پی رہے ہوتے ہیں. سوری, کون برا بنے, نو مور, اٹس انف, اٹس مور دین انف, آئی کینٹ, آئی کینٹ, کیونکہ آئی ہے نا اندر. لیکن وہ دیکھیے آخری کوشش اصلاح کی, اس بگڑے کو سنوارنا ہے, اس کو ادھیڑنا بھی ٹھیک کرنا ہے. نیا کپڑا سینا بہت آسان ہوتا ہے, سلے ہوئے کو خراب سے ٹھیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. نبیوں کا حال یہ تھا, اللہ ان کو بگڑی ہوئی قومیں دیتا ہے, بالکل جن کے حصے بکھرے ہو چکے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں یا قومی, اے میری قوم, لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح وقوم ہود او قوم صالح. اور اے میری قوم کے لوگوں, دیکھو میری دشمنی تمہیں اس انجام تک نہ لے جائے کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جیسا کہ قوم نوح, قوم ہود یا قوم صالح پر آیا تھا. اور وما قوم لوط منکم ببعید, اور قوم لوط تو تم سے ذرا بھی دور نہیں ہے. مراد کے زمانی بہت نہیں تھا, ان سے پیچھے تھی نا قوم. پچھلی قوموں کی مثالیں دے کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ 4 قومیں وہ تھیں جن پہ عذاب استحصال آیا تھا. استحصال کیا, اب تو یاد ہو جانا چاہیے نا, جڑ کٹنے والا, جڑوں سے کھیڑ دیا. کہتے ہیں کہ دیکھو تم میری دشمنی میں میری مخالفت کر رہے ہو نا, کیونکہ تمہارے ایمان پہ زد پڑ رہی ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کی مخالفت, اللہ والے کی مخالفت مول لو اور قوم لوط اور باقی قوموں جیسے حالات تمہارے سامنے آ جائے. قوم مدین سے بالکل قریب کا علاقہ تھا قوم لوط کا بھی, بحر مردار آج بھی وہاں موجود ہے. آمور اور سدوم نام کی بستیاں تھیں جہاں تک لوط آئے. اور زمانے کے اعتبار سے بھی دیکھیے تو دونوں قوموں میں 1000 سال کا نہیں بلکہ 100 سال کا فرق تھا. اور اس طرح سے سمجھایا جا رہا ہے کہ جس نے اللہ کی طرف بلانے والے کے ساتھ ذاتی دشمنی رکھی, عناد رکھا, بغض رکھا اور دین کی دعوت ٹھکرا دی. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ دین والوں کی وجہ سے ہم دین چھوڑ رہے ہیں, دین والوں کا کچھ نہیں جائے گا, ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ. لیکن دین کی دعوت کو کسی انسان کے لیے اختیار کرنا اور انسان کے لیے چھوڑ دینا بہت خطرناک ہے. دعوت دینے والے کا نقصان نہیں ہوتا, لیکن تعصب کی بنیاد پر اس دعوت کو ٹھکرانے والے خود کو برباد کرتے ہیں. اتنی باتیں کون کرتا ہے لوگوں سے, اور اتنی کڑوی باتیں سن کر جس کے دل میں درد ہوتا ہے. آپ اپنے بچے کی آخری حد تک اصلاح کرتی ہیں، لیکن دوسرے کے بچے کی آپ کوئی نہیں کرتے. آپ دوسرے کے بچے کو ذرا ٹوکیں اور آگے سے ذرا سی بدتمیزی سے بولے، آپ کہتے ہیں بھاگ جاؤ، چلے جاؤ گھر. کئی اسٹوڈینٹس ناقابل برداشت ہوتے ہیں. ایک اسٹوڈینٹ تھی، انہوں نے کہا کہ میں بچوں کو پڑھاتی ہوں، ایک بچہ سیکھ ہی نہیں رہا. اتنا وقت لگتا ہے کہ شاید میں 4 بچوں کو پڑھا لوں، تو کیا خیال ہے اب میں اس کو چھوڑ دوں، نکال دوں اس کو؟ تو میں نے کہا آپ کیوں اپنا بھلا برا کرتی ہیں، بیٹھا بیٹھا رہنے دیں، کبھی تو پڑھے گا نا. توجہ کم دے دیں، آپ کو لگتا ہے اس کے پلے میں نہیں کچھ پڑھ رہا، اس کو آگے آگے پڑھائیں، کچا پکا کرائیں، پھر بعد میں آ جائے گا. تو یاد رکھیے، بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے، اور محبت. اپنے بچے سے جو محبت ہے نا، وہ جب امت کے بچوں سے محبت ہوگی نا، تو آپ پھر حضرت شعیب کی طرح تڑپیں گے. خود ان کو ریزالو کرنا سکھا رہے ہیں اپنے پرابلمس کو، یہ کر لو وہ نہ کرو، دیکھو میری مخالفت سے تمہیں اللہ کی پکڑ آئے گی. ہم ہوتے کہتے کرو میری مخالفت، دیکھنا پھر جو تمہیں مزہ آئے گا. یہ کتنا درد والا انداز ہے شقاقی، میری مخالفت، شق عداوت، یعنی میری مخالفت تمہیں نہ اکسائے کہ تم اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ. اور جو پچھلے گناہ کر چکے ہو تو اس پہ آیت 90، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور استغفار کرو اپنے رب سے پھر اس کی طرف رجوع کرو. ان ربی رحیم ودود، یقیناً میرا رب رحیم بھی ہے اور محبت فرمانے والا بھی ہے. ہے سورت خود میں توبہ کا ذکر بار بار، گناہوں کی معافی پلٹ آؤ، عبادات میں، اطاعت میں، جہاں کمی ہو گئی ہے اس کے دامن رحمت میں پناہ لو. وہ بڑا رحم کرنے والا اور ودود ہے. ودود فاول سے مبالغے کا صیغہ، ود اللہ تعالیٰ کا نام ہے، پیار کرنے والی ذات. اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتا ہے تم سے. اب آپ کو اس میں حضرت شعیب کی درد مندی دکھی، لیکن قوم کی بے حسی ان کے اس جواب سے دکھتی ہے جو اگلی آیت میں، آیت 91، قالوا یا شعیب، اے شعیب، کہنے لگے اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، تم یہ جو کچھ کہتے ہو نا، ان میں سے تو اکثر باتیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. ذرا آپ بتائیے، کیا حضرت شعیب ان کو میتھمیٹکس کے سوال بتا رہے تھے جن کو سمجھ نہیں آتے، یا کیمسٹری کے فارمولے تھے، یا فزکس کی ایکویشنز تھی؟ کیوں نہیں سمجھ آ رہی تھی بھلا؟ تجارت خوب سمجھتے تھے، 2 + 2 اور 9 + 9 = 10 اور 11، اس کو تو خوب جانتے تھے. حضرت شعیب کی بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی تھی؟ اس لیے کہ ذہن کا سانچا بگڑا ہوا تھا، سوچوں کے زاویے بدلے ہوئے تھے، سیدھی بات سمجھ نہیں آتی تھی. آج بھی وہ مرد جو دن رات کماتے ہیں، ان کو اب تجوید سیکھنا ہوگا، کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آتی، ہماری زبان موٹی ہو گئی ہے. ان کو لفظی ترجمے کی بات کریں، وہ کہیں گے یہ ہم سے نہیں ہوتا. آپ ان کو ذرا گرامر کی کوئی بات سنیں، کہیں گے ہمیں نہیں سمجھ آتی. اور عمل کی باتیں کریں، کہتے ہیں آج کے دور میں یہ کیا ہوگا. یہی بات ادھر دکھتی ہے کہ تمہارے اور ہمارے بیچ میں مینٹل گیپ ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ جنریشن گیپ ہوتا ہے. اسی طرح دولت مند طبقہ دیندار طبقے سے مینٹل گیپ فیل کرتا ہے، کہتے ہیں مولویوں کو کیا پتا ہمارے کیا پرابلمز ہیں، اتنے بڑے بڑے بینکوں سے ہمارے معاملے ہیں، اب بھلا ہم جا کے وہاں اپنے اسلامی قانون دے دیں. یہ مراد ہے، بلاکیج ہے، ہماری ویو لینتھ تم سے نہیں ملتی. اور ملتی بھی کیسے، وہ تجارت پیشہ لوگ تھے، وہ دنیا کی باتیں کرتے رہتے تھے سارا دن، اور نبی ان کو آخرت کی باتیں سکھاتے تھے، اب دھمکیوں پہ اتر آئے. وَإِنَّ لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں اپنے درمیان ایک کمزور آدمی، تمہاری تو کوئی صحیح نہیں، بہت ضعف ہے تمہارے اندر، ویک پوائنٹ ہے، یعنی تم بہت ویک ہو. تمہارے آگے پیچھے کوئی ایسی پمپ اینڈ شو ہمیں نہیں دکھتی کہ جس کی وجہ سے ہم مانے کہ تم بہت زیادہ بڑے ہو. اور دیکھو وَلَوْ لَرَحْتُكَ، اگر تو ہماری برادری کا نانا ہوتا. رخت برادری کو کہتے ہیں، 3 سے 10 لوگوں کا گروہ. ہمارے خاندان کا شخص نہ ہوتا نا تو اللہ رجمنا کا، ہم تو تمہیں کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے، پتھر مارتے، تم ہمارے رنگ میں بھنگ ڈالتے ہو، تم جیلس فیل کرتے ہو ہماری دولت سے، تمہارے پاس خود نہیں ہے نا تو تم دوسروں کو بھی نہیں کھاتا دیکھ سکتے. ومانتا علینا بھی عزیز، اور تم ہم پر غالب بھی نہیں ہو. اللہ اکبر، کتنا حوصلہ تھا نبیوں کا، اتنے دانے کوئی سن کے پھر کھڑا رہتا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ.
اور یہاں ایک بات بھی سمجھیے، جس زمانے میں یہ سورت نازل ہو رہی تھی اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بالکل اسی قسم کے حالات سے سامنا کرنا پڑ رہا تھا. وہی مکی دور کے پھر تین دور یاد کر لیں، یہ سودے بازیوں کا دور تھا، کچھ لو اور دو اور بات ختم کرو، کمپرومائزنگ ہو جاؤ. پچھلی قوموں کے واقعات جس تواتر کے ساتھ بار بار آ رہے ہیں نا، یہ صرف تکرار نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی کی دعوت کو اس دور میں جن مسائل کا سامنا تھا نا، اسی سے متعلق واقعات پیش ہو رہے تھے. اللہ کے نبی اور ساتھیوں کی دل جوئی ہے، رہنمائی ہے. یہاں حضرت شعیب کے خاندان اور قبیلے کی حمایت کی بات کیوں ہوئی؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو بھی ایسے ہی حالات تھے. اس دور میں بنو ہاشم کے سردار ابو طالب تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے. آپ کا بچپن ان کے سائے میں گزرا، پورا خاندان آپ کو بنی ہاشم کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پاتا تھا. اگر اس وقت ابو طالب کی بجائے اگر ابو لہب سردار ہوتے تو اللہ کے نبی کو کبھی وہ حمایت نہ حاصل ہوتی. مشرکین مکہ نے جب بھی اللہ کے نبی کو کچھ کہنے کی کوشش کی، ابو طالب سامنے آ گئے. بلکہ میں نے ایک جملہ کہیں سنا، بڑا مختار جملہ، کہ ابو طالب کو جو اسلام قبول کرنے کی توفیق نہیں ہوئی نا اینڈ تک، وہ اسلام کا دفاع تھا. بات سمجھے؟ ابو طالب ایک دیوار تھے اللہ کے نبی کے آگے اور کفار کے بیچ میں. کہتے تھے لولا، اگر ہماری راہ تو کا نہ ہوتا، ہماری برادری کا نہ ہوتا، ہم تجھے مارتے. بالکل یہی حالات اللہ کے نبی کے ساتھ تھے. لوگ کہتے تھے ابو طالب ہی اگر تیرا بھتیجا نہ ہوتا نا، تو ہم اس کو کب کا مزہ چکھاتے. ایک موقع پہ تو ان ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا. بہت ہی خوبصورت واقعہ آتا ہے، خوبصورت اس لیے کہ کفر کتنا یار بنتا ہے لیکن کتنا بیوقوفی کا کام کرتا ہے. جب انہوں نے ہر طرح کی کوششیں کر لی ابو طالب کو اللہ کے نبی کے خلاف کرنے کی، نہ مانے، اللہ کے نبی بھی نہ مانے، وہ بھی نہ مانے، تو ایک دن خالد بن ولید بن مغیر آیا، کہنے لگا کہ ابو طالب، یہ بھتیجا تجھے بیٹے کی طرح لگتا ہے نا، تو نے اس کو بیٹا باپ بن کے پالا ہے، یہ لو سب سے خوبصورت بچہ اپنے خاندان کا، کہا کہ یہ بچہ ہم تمہیں دیتے ہیں، جو تم لے لو اور اپنا بھتیجا ہمارے حوالے کر دو، یعنی اس کے بدلے ایک بچہ اور لے لو. تو ابو طالب نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے اچھا جی، تم اپنا بچہ مجھے دو جس کو میں بیٹا بنا کے پالوں، اور تم میرا بیٹا لو اور اس کو قتل کر دو، میرے سے یہ امید نہ رکھنا. میں کہتی ہوں میں اور آپ کس دین کی بات کرتے ہیں اور کن قربانیوں کی بات کرتے ہیں؟ ان کو تو اس حد تک آزمایا گیا کہ اگر خاندان کے نہ ہوتے تمہیں مزہ چکھا دیتے. اللہ نے ابو طالب کی صورت میں ایک قلعہ دیا تھا اللہ کے نبی کو. حضرت شعیب کہتے ہیں آیت 92، قال یا قومی ارختی اعزو علیکم من اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، کیا میرا خاندان تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ یعنی برادری تمہیں زیادہ پیاری ہے اللہ کے نام سے؟ میرا پشت پناہ تو اللہ ہے، تم اللہ سے نہیں ڈرتے، میرے خاندان سے ڈرتے ہو. واتخذتموه وراءکم ظهریا، اور اس اللہ کو تو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا، یعنی اللہ کو بس پشت ڈالا ہوا ہے، اس کو مانتے نہیں ہو اور خاندان برادری کی دھمکیاں دیتے ہو. دیکھیے یہ بھی انسان کی نفسیات کا ایک عجیب پہلو ہے کہ آج ہم بھی اللہ کو اپنا خالق، مالک اور معبود ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی دنیا کے کاموں میں مگن رہتے ہیں. اللہ کو ہم نمازیں پڑھ کے خوش کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دنیا میں خوش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا یہاں اللہ کے مقابلے میں، سوری، خاندان کے مقابلے میں اللہ کا ذکر کرنا کیا بتاتے ہیں؟ کہ تمہاری برادری یہ ہے، میری برادری اللہ والی ہے. اللہ سے جو محبت ہے، اس کے ساتھ جو ساتھی مجھے ملے ہوئے، مجھے وہ زیادہ پیارے ہیں، اس لیے تم برادری سے ڈرتے ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. انا ربی بما تعملون محیط، یقیناً میرا رب تو تم سب کا احاطہ کیے ہوئے جو تم کر رہے ہو. اور آخری بس اب ان کو ایک بڑی محبت والی نصیحت ہے جس میں تھوڑی سی ڈانٹ بھی ہے. اور میری قوم کے لوگوں، تم کرو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر، میں بھی کر رہا ہوں جو میں اپنی جگہ پر کر سکتا ہوں. جو کرنا ہے میرے خلاف کرو، چالیں چلو، اقدامات کرو، مجھ پہ سینکشنز لگواؤ، میرے اوپر الزامات ڈھلواؤ، لیکن میں بھی انتظار کروں گا. چیلنج کا انداز ہے. سورت الانعام میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا. جب مکہ کے حالات بگڑے تو مکہ میں بھی حق اور باطل کی کشمکش تھی, بالکل وہی کیفیت تھی, بیزاری, بس ختم, اب جو کرنا تھا کر لو. سوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے کہ میں یاتی ہی عذاب یخزی ہی, کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا. ومن ہوا کاذب, اور کون ہے جو جھوٹا ہے. کرو کیا, ورتقبو انی معکم رقیب, تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. دھمکی دے رہی, یہ وہ آخری دھمکی ہوتی ہے جس کے بعد پھر عذاب آتا ہے. تم نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا, میں بھی تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں. ان آیتوں میں لفظ گزرا زہریہ, زہر کہتے ہیں زہر پشت کو, بیک کو, تو زہریہ کہتے ہیں بھولا بسرا, پیٹھ پیچھے ڈالا ہو جس کو. اشارہ مطلب کیا ہے کہ تم نے اس کو لیز پرائرٹی دے دی. اب عذاب آنے کی کیفیت دیکھیے آیت 94, ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معہ برحمت منا, پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے نجات دے دی شعیب کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے. واخذت الذین ظلموا الصیحۃ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین, اور ظالموں کو آپ پکڑا ایک زبردست کڑک نے تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. کیسے؟ آیت 95, کلم یغنو فیخا, جیسے کہ وہ کبھی وہاں آبادی نہ تھے. الا بودا لمدین, اگار رہو, پھٹکار پڑی مدین پر. کما بائدت سمود, جیسے کہ سمود پر پھٹکار پڑی. کیسی بات ہے, ایک انجام. آپ نے دیکھا بات جن باتوں سے شروع ہوتی ہے اسی سے ختم ہوتی ہے. تو یہ تھی قوم مدین, دولت مند, سپر پاور, دماغ چلتا تھا, ان کی اکانومی اتنی اوپر جا رہی تھی, جب گری تو ایسے لگا کہ کچھ ہے ہی نہیں تھے. قوم سمود کا ذکر کرنے میں ان کے ساتھ آ گیا, اس لیے کہ دونوں قوموں کا انجام ایک تھا. ان پر بھی زلزلہ آیا تھا, اور زمین سے زلزلہ بھی تھا اور آسمان سے چیخ تھی. یہ بھی مضبوط گھروں میں, مکانوں میں, پہاڑوں میں گھر بناتے تھے, اور عذاب آیا تو اللہ نے ایسے کر دیا کہ جیسے بستے ہی نہیں تھے. ہم سب کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ یہ ماضی کی بڑی بڑی قومیں تھیں جو نہیں رہی, تو اگر آج اللہ کی مرضی کے خلاف اکنامیکل سسٹم بنانے والی قومیں پنپ رہی ہیں, تو پھر آپ بتائیے کہ بعد میں ان کا انجام کیا ہوگا. اور دنیا خود دیکھ رہی ہے اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ جو لفظ ہے نا, ورتقبو, رقبہ سے را قاف با, ترقب کہتے ہیں انتظار کرنے کو اور چوکس رہنے کو, کڑی نظر رکھنا. آئی ول ٹیک این آئی آن اپون یو, یہ مراد ہے. برائی کے وقت کا انتظار کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اسی سے لفظ رقبہ ہے, رقبہ گردن کو کہتے ہیں, گردن آزاد کروانا, غلام کی گردن آزاد ہوتی ہے, مراد جہاں نگرانی ہے. اللہ کہتے ہیں شعیب کو بہت دھمکیاں دیتے تھے, وہ خود میری رحمتوں سے دور ہوئے. اور اس کے بعد بالکل مختصر سا تذکرہ قوم موسیٰ کا. حیرت ہوتی ہے جب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ مختصر ہوتا ہے, کیونکہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں ان کا ہی تذکرہ ہے, اور کسی کا زیادہ تذکرہ ہونا اس سے محبت کی علامت ہے. یہاں اصل میں صرف قوم فرعون کا انجام ہے, موسیٰ کی دعوت کا ذکر نہیں. صرف ایک جملہ آیت 96 میں, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ, اور ہم نے بھی بھیجا موسیٰ کو اپنی آیتوں اور واضح سند کے ساتھ, وہ ید بیضا اور عصا. کدھر بھیجا؟ الی فرعون وملئہ, فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. پھر کیا ہوا؟ فَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ, لیکن انہوں نے فرعون ہی کی پیروی کی. جبکہ وما امر فرعون بھی رشید, حالانکہ فرعون کا معاملہ راستی والا نہیں تھا, یعنی فرعون کو تو خود سمجھ نہیں تھی, دوسروں کو کیا سمجھ دیتا. موسیٰ کو چھوڑا, فرعون کی بات مان لی, کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ریسورس فل تھا نا, تو لوگ پیسے والے کی بات سنتے ہیں, زور والے کی سنتے ہیں, حالانکہ اللہ اس کو کہتے ہیں کہ وما امر فرعون بھی رشید, اس میں کوئی رشد اور کوئی بھلائی نہیں تھی. کیا کیا فرعون نے؟ آیت 98, یقدم قومہ یوم القیامہ, قیامت کے دن وہ آئے گا آگے چلتا ہوا اپنی قوم کے, لیڈ کرے گا اپنی قوم کو, کیونکہ دنیا میں لیڈر تھا, دنیا میں اس کو قیادت کا موقع تھا, اس لیے قیامت کے دن بھی ہوگا. कौन पीछे आएगी किधर, फाउरदहुमन्नार, फिर वो आग के घाट पर इन्हें उतार लेगा। वबीसल विरदुल मौरूद, वो बहुत ही बुरा घाट है जिस पर वो उतारे जाएंगे। ये जो विरद और मौरूद है ना, एक ही लफ्ज है, वरदा से। वारिद कहते हैं पानी पे उतरने वाला, और विरदुन कहते हैं पानी पर उतरना। मौरूद विरद की सिफत है, ताकीद के लिए आया। दुनिया में भी पानी में डुबोया गया था, कयामत के दिन आग की अजाब की तरफ पहुंचेगा। जानवरों का कोई गिरोह ज़हन में लाइए, पानी पीने के लिए घाट पर आता है ना, मालिक आगे होता है, जानवर पीछे होते हैं, पानी पे आके उनको छोड़ देता है। इसी तरह फिरौन बजाहर तो दुनिया का पानी पिला रहा था अपनी कौम को, लेकिन वो आग थी जहन्नम की। वो ब्यूफी हाज ही लानत व यौमल कियामा, और इस दुनिया में भी इसके ऊपर लानत लगा दी गई, और कयामत के दिन भी। बी सर्रिफ दुल मरबूद, बहुत ही बुरा है वो इनाम जो इनको मिलने वाला था। अल्लाह अकबर, क्या समझ आया? वो तो बहुत समझदार बनता था, वो तो अपने आप को कहता था तरीकतुमुल मुसला, तरीकतुमुल मुसला। तुम मेरे मिसाली तरीके पे बात करते हो, सूरह शूरा में हम पढ़ेंगे, और शूरा में भी और बहुत जगह भी आएगा। अल्लाह कहते हैं फिरौन को ना खुद अकल थी ना दूसरों को, वो कहते हैं ना कि खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। बुरे लोगों के पीछे चलने वाले आंखें बंद करके ऐसे ही होते हैं। ये जो लफ्ज ना रिफ्दुल मरफूद, रिफ्त कहते हैं अतिया, बख्शिश, गिफ्ट, मरफूद दी जाने वाली बख्शिश, यहाँ रिफ्त की ताकीद के लिए आया, यानी वजन खूबसूरत करने के लिए। क्यामत के दिन फिरौन खुद भी खाली हाथ होगा, और उसके पैरोकार हसरत से उसको देख रहे होंगे। और अल्लाह ताला यहाँ अब नबियों के किस्सों का ततिमा फरमाते हुए अपने नबी को कहते हैं, आयत 100 से 101, जालिका मिन अंबाइल कुरान नकुस्सुहु अलैक। ए नबी, ये गैब की खबरें हैं बड़ी बड़ी बस्तियों की जो हम आपको सुना रहे हैं। मिन्हा कायमुम व हसीद, इनमें से कुछ बस्तियां आज भी कायम है और कुछ बिल्कुल खत्म हो गई। कायम कौन सी थी? जैसे मिस्र आज भी मौजूद है, ठीक है, फिरौन का कल्चर कायम है। और हसीद, जड़ कटी हुई, हसदा से, उस खेत के लिए कहते हैं जिसकी फसल काट ली हो। कभी देखा हो तो बड़ी वीरानगी का एहसास होता है, वीरानी का मंजर। अजाब इस्तेसाल के बाद तबाहशुदा बस्तियों के लिए यहाँ हसीद का लफ्ज आया है। कोई नाम निशान तरक्कियों का वहां नहीं रहा, उनके आसार बाकी रखे कुछ के और कुछ के नहीं रखे, ताकि लोग नसीहत हासिल करें। बाज लोग कहते हैं कि सेटेलाइट के जरिए से आजकल कुछ ऐसी जगह देखी जा रही हैं कि जहां से शद्दात नाम का शख्स जिसने जन्नत बनाई थी, उसके कुछ आसार मिल रहे हैं जमीन के अंदर। क्योंकि अल्लाह ने जमीन में डाल दिया था ना, तो वो सेटेलाइट से जमीन के अंदर देख लेते हैं। इसी तरह कौम समूद के कुछ मकान जब वो जमीन के अंदर है, इसको लोग ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। क्यों हुआ इनके साथ ये सब कुछ? आयत 101, वमा ज़लमनाहुम, और हमने इन पर जुल्म नहीं किया। वलाकिन ज़लमू अन्फुसहुम, लेकिन वो अपनी जानों पर खुद जुल्म कर रहे थे। क्या जुल्म था उनका? अल्लाह की नाफरमानी। इस जान पर अपने आप को, अपने इस जान पर अल्लाह के हुक्म को ना मानना। फमा अग्नत अन्हुम आलिहतुहुम अल्लती यदून मिन दूनिल्लाह, तो इनके तो कुछ भी काम ना आ सके, इनके वो सारे माबूद जिनको अल्लाह के सिवा पुकारते थे। मिन शहीन, कुछ भी नहीं काम आए। लम मजामरु रब्बिक, जब आपके रब का हुक्म आ गया, यानी आप वो क्यों ना आए इनके बाबे और इनके माबूद, इनकी करनी वाले क्यों ना इनकी मदद को आए। हर कौम जो डूबी उसने कुछ बुत रखे हुए थे, जब कौमों पे अल्लाह की पकड़ आई तो किसी के बुत ने काम ना दिया। वमा ज़ादूहुम गैरा तत्बीब, और उन्होंने कुछ इजाफा नहीं किया उनके हक में मगर बर्बादी का ही। कि जब अल्लाह की पकड़ आती है तो कोई दुनिया वाला भी बंदे को बचा नहीं सकता। तो ये थी कौमों की कहानी। हदीस में आता है कि आदमी उसी के साथ होगा जिससे उसने मोहब्बत की। जो दुनिया में फिरौन और फिरौनी कल्चर से मोहब्बत करते थे, क्यामत के दिन उसी के साथ जाएंगे, उसके पीछे होंगे। مسد احمد کی روایت میں آتا ہے کہ امراؤ القیس شورا کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ان کو آگ کی طرف لیڈ کرے گا. آج دنیا میں جس کے پیچھے جائیں گے اسی کے ساتھ قیامت کے دن بھی انجام ہوگا. تو سبق بہت غور طلب بھی تھا اور بہت عام فہم بھی تھا. ساری بات کا خلاصہ یہی نکلا کہ دین صرف کمرہ امتحان میں آ کے بیٹھ کے پڑھنے سیکھنے والی چیز نہیں ہوتی. دین زندگی میں اپلائی کرنے والی چیز ہے. جو لوگ اس کو نہیں پکڑتے ان کی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قابل رحم ہو جاتی ہے. آج تو آپ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں نا. پچھلی قوموں کا تو کام معاملہ ختم کر دیا جاتا تھا. آج چونکہ اللہ تعالیٰ کی ابھی پکڑ کا وقت نہیں آیا تو زندگیاں اجیرن کی ہوئی ہیں. اور وہ لوگ جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں جیتے, خاص طور پہ آج پوری دنیا پہ ایک عجیب سی وحشت دکھتی ہے. دین کا تعلق ٹوٹے تو صرف ڈپریشن ہے. وجہ کیا ہے؟ بے برکتی. اور بے برکتی کس بات کی ہے؟ اللہ کی بات کو نہ ماننے کی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دیں. مجھے آج کے سارے سبق میں جو لفظ سمجھ آیا نا خوبصورت لگا, وما توفیقی الا باللہ. میری تو توفیق ہی نہیں ہے اللہ کے حکم کے سوا. اللہ چاہتا ہے ہم وقت کو روتے رہتے ہیں, رونا اس بات پہ کہ توفیق ہی نہیں مل رہی. ہم مجبوریوں کو روتے رہتے ہیں, روئے تو اس بات پہ کہ اللہ تو توفیق کیوں نہیں دے رہا نیکیوں کی. اور اللہ تعالی ہماری مدد کرے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کوئی سوال آپ کا؟ جی آپ. ہم ان کا سوال ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے. تو پھر ابو طالب کو تو اللہ کے نبی سے بہت محبت تھی, تو پھر ان کو ایمان کی توفیق کیوں نہیں ملی؟ یہ سوال ہے نا. آپ کے سوال میں اس کا جواب ہے, نبی کے ساتھ محبت تھی, زندگی میں اللہ نے نبی کے ساتھ رکھا. نبی کے مشن سے محبت نہیں تھی, تو آخرت میں تو مشن کی بنیاد پہ بات ہوگی. اللہ کے نبی سے محبت تھی, اللہ کے نبی کے دین سے محبت نہیں تھی. جس کو ایک جملے میں ہر سال ہی ربیع الاول میں دہرا دیتی ہوں کہ ابو لہب کو نبی کی ذات سے محبت تھی, نبی کی بات سے نہیں. ذات سے محبت تھی تو جب آپ کی پیدائش ہوئی تو خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا. اور بات سے محبت نہیں تھی تو قول لا الہ الا اللہ تبلے خون کی پکار پہ کیا کہا کہ تبت یدا نعوذ باللہ کہ محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. تو آج ہم بھی نبی کی ذات سے محبت کر کے نہیں بچیں گے جب تک کہ نبی کی بات سے محبت نہ کریں. اور کوئی بات؟ جی اسما آنٹی جی, آپ نے آج کیا فیل کیا سبق سے؟ تھوڑا سا اونچی بول دیں یا ادھر آ جائیں اگر مشکل نہ لگے تو. بالکل اللہ کی رحمت مانگنی ہے. اور یا آپ نے دیکھا بار بار رحمت جو ہے وہی کے معنوں میں آتا ہے, تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی دعا کرتے ہیں. ادھر بریک ہے, انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کا تجوید کا سیشن ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لوگ.
جزاکم اللہ خیرن کثیر وحسن الجزا. الحمد للہ. جی ماشاء اللہ ہماری تفسیر مکمل ہوئی ہے, اور الحمد للہ جو لاسٹ کی ٹاپکس تھے ان سب سے ہم نے کتنا کچھ سیکھا ہے. انشاءاللہ ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے. آپ لوگ بھی ایسا کریں کہ 10 منٹس کی بلکہ 15 منٹس کی اپنی بریک کر لیں انشاءاللہ, پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ ریکیپ کریں گے. ٹھیک ہے, چلیں. جزاکم اللہ خیرن کثیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.